सोचा नहीं था भगवान मिलेगा स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा कभी सोचा नहीं था।
ओम शांति। आज इस सुंदर वेला में सभी हिसार के भाई बहनों के बीच में जिंदगी से हारे हुए को फिर से नया जीवन प्रदान करने वाले, दिल के मरीजों को फिर से नवचेतना प्रदान करने वाले ऐसे हमारे वरिष्ठ भ्राता डॉक्टर सतीश गुप्ता जी का हम दिल से अभिवादन करते हैं, अभिवादन करते हैं, अभिवादन करते हैं। आपने ईश्वरीय ज्ञान 1986 में प्राप्त किया, 1995 से आपने ग्लोबल हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी एंड मेडिसिन के रूप में अपनी सेवाएं देना शुरू की। तब से लेकर आप बेहद बाबा के घर में बेहद बच्चों की दिल से सेवाएं कर रहे हो। ट्रोमा सेंटर के जो हमारी ट्रोमा हॉस्पिटल है उसके आप इंचार्ज हो। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर आपको अनगिनत अवार्ड प्राप्त हुए हैं और उनमें से आपको प्रेसिडेंट की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। आप बाबा के एक ऐसे विशेष रत्न हो जिन्होंने मेडिटेशन एंड मेडिकल साइंस दोनों को मिला करके बहुत चमत्कारिक रिजल्ट निकाले हैं। हम सभी जानते हैं केड का जो प्रोजेक्ट चल रहा है हमारे विश्वविद्यालय के अंदर, तो उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपने हजारों हार्ट पेशेंट को ओपन हार्ट सर्जरी से बचा लिया और बाबा के घर से नया जीवन दान प्राप्त वो सभी करके गए हैं। इसके द्वारा बाबा का नाम सिर्फ भारत में नहीं लेकिन पूरे विश्व के अंदर रोशन हो गया है। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि यह सतीश गुप्ता जी वो आत्मा है जो हमारी बड़ी दादी जी उसके अंग संग बहुत 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 रहे हैं, क्योंकि दादी जी की तबीयत थोड़ी नाजुक होती गई तो गुप्ता जी सदा ही दादी जी के साथ साथ रहे हैं। दादी जी का बहुत अनुभव प्राप्त किया है और बहुत दिल से सबकी तो सेवा करते ही है लेकिन हमारी आदरणीय बड़ी दादी जी की भी आपने बहुत दिल से दिन रात सेवा की है। तो ऐसे हमारे अमूल्य रतन यज्ञ के उसको हम दिल से बधाई भी कर देते हैं। आज आपका विषय है कर्म इंद्रिय जीत माया जीत। डॉक्टर सतीश गुप्ता जी।
ओम शांति। मीठे बाबा ने से हम रोज बाबा की मुरली सुनते रहते हैं ना सभी। आज की मुरली भी सुनी, संडे की मुरली सभी ने सुनी, इतवार की, अभी परसों की मुरली सभी ने। तो हर दिन की मुरली बहुत महान बनाने वाली होती है। तो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है कि हमें क्या बनना है, इस राज्यों से हमें क्या बनना है, कर्मातीत बनना है ना। कर्मातीत माना कर्म के बंधन से मुक्त बन जाना है। हम जो कर्म करें उसका बंधन हमें ना हो, हम देह के भान से मुक्त हो जाएं। और उससे पहले कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है कर्मेंद्रिय जीत, क्योंकि हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं उनके द्वारा जो कर्म होते हैं हम वो रिकॉर्ड होते रहते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। और 63 जन्म से हम क्या करते आए, क्या करते आए, जब से देवहन आया तब से हम क्या करते आए, विक्रम करते आए। तो कर्म कौन कौन से कर्म होते हैं, जैसे नॉर्मली खाली हाथ पैरों से देखना कर्म नहीं, हाथ पैरों से कर्म करना कर्म नहीं होता है, किंतु कर्मेंद्रियों के द्वारा जो भी हम कर्म करते हैं वो क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। देखना भी कर्म है, वो भी अंदर रिकॉर्ड हो, जो भी आप देख रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। सोचना कर्म नहीं है, सोचना कर्म नहीं है, देखना भी कर्म है। कर्मेंद्रिय सोच कर, आंख एक कर्मेंद्रिय है ना, पांच कर्मेंद्रियां हैं हमारी, आंख है एक, एक नाक है, एक कान है, एक मुख है और एक त्वचा है, स्किन है ना हमारे ऊपर, सारी बॉडी पे स्किन है। तो ये त्वचा के द्वारा जो हम सेंस करते हैं ना, वो भी एक कर्म है, राइट। सोचना कर्म नहीं है, तो देखना भी कर्म है, पढ़ना भी कर्म है, सुनना भी, अगर हम देख रहे हैं किसी को देख रहे हैं और उसमें देहभान से देख रहे हैं, राइट, या अहंकार से देख रहे हैं, या क्रोध से देख रहे हैं, या काम विकार की भावना से देख रहे हैं, किसी कोई कामना की इच्छा से किसको देख रहे हैं, क्रोध से देख रहे हैं, क्या वो, अच्छा, किसी को लोभ की वृत्ति से देख रहे हैं, अहंकार की वृत्ति से देख रहे हैं, मोह से देख रहे हैं किसी को, किसी भी इन पांचों में से किसी भी उससे देख रहे हैं तो वो विकर्म हो गया, ठीक है ना। पढ़ रहे हैं, अगर किसी कोई चीज हम पढ़ रहे हैं उसमें कोई भी विकार समाया हुआ है, काम विकार है, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो विकर्म हो गया, राइट। सुन रहे हैं किसी की बात, किसी भी विकार के वश होकर सुन रहे हैं तो वो विकर्म हो गया। ऐसे बोल रहे हैं, किसी विकार के वश होकर बोल रहे हैं, तो किसी से बच्चों से बोल रहे हैं, मोह के वश बोल रहे हैं, मोह में आके बोल रहे हैं, उसको मोह से भरे हुए शब्द बोल रहे तो पाप कर रहे हैं, विकर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। ग्रीड, किसी नाम मान शान की इच्छा से, इससे हमें कुछ फायदा होगा, इससे कुछ कमाई होगी, वो बोल रहे हैं तो भी विकर्म हुआ ना, नहीं, राइट। खा रहे हैं, अगर आसक्ति से खा रहे हैं, स्वाद में आके खा रहे हैं तो भी कर, वो भी तो भी पाप हुआ, नहीं, आसक्ति में खा रहे हैं ना, भूख के लिए खाना ठीक है, आपको भूख लगी है आप खा रहे हैं, जरूरी है खा रहे हैं, किंतु आप उसको लोभ के वश खा रहे हैं, मोह के वश खा रहे हैं, ये मेरी माँ का बनाया हुआ है, पेट में जगह नहीं है तो भी खराब नहीं जाना चाहिए, मैं माँ का बनाया तो खा लूं, ये भी पाप हो गया। अहंकार के वश खा रहे हैं, क्रोध में खाके खा रहे हैं, पाप हुआ नहीं हुआ। तो इस तरह से मतलब जो है, जो भी हम इन पांच कर्मेंद्रियों से करते हैं और विकारों के वश करते हैं वो विकर्म कहलाते हैं, और सब रिकॉर्ड हो जाते हैं। 63 जन्म द्वापर युग से जब से शुरू हुआ हमने ये विकर्म करते आए, तो हजार मतलब कितनी बार, एक एक का पाप कितनी बार किया होगा, एक ही जन्म में कितनी बार करते हैं, इसी जन्म में देखो तो हमें कितनी बार गुस्सा किया होगा, मतलब बाबा के बच्चे बनने से पहले और बाबा के बच्चे बनने के बाद भी कितनी बार गुस्सा किया होगा बताओ, हजार बार किया होगा, 10,000, 20,000, 50,000 बार, लाख बार किया होगा। अब ये जो है, अब कई बार कहते हैं हम तो बहुत योग करते हैं, तो हमारा विक्रम तो खत्म, बार बार फिर भी गुस्सा आ जाता है, तो ऐसे कैसे होता है, क्योंकि हमारे जैसे हमारे SMS आते हैं मोबाइल में, तो हम एक मोबाइल SMS, इसमें डिलीट ऑल नहीं है कि बटन दबाया सारा डिलीट हो गया, ऐसा नहीं है, इसमें एक एक खुलता है फिर डिलीट होता है, एक एक खुलता है फिर डिलीट होता है, एक एक खुलता है फिर डिलीट होता है, 1 by 1 डिलीट करना पड़ता है ना। तो पहले कर्मेंद्रिय जीत बनना पड़ेगा, जब कर्मेंद्रिय जीत बन जाएंगे तो फिर हम माया जीत बनेंगे, क्योंकि सारे के सारे विकार कर्मेंद्रिय के द्वारा ही होते हैं। तो सबसे पहले कर्मेंद्रिय जीत बनना पड़ेगा, फिर हमें क्या बनेंगे, माया जीत बनेंगे, और जब माया जीत बनेंगे तो प्रकृति जीत बनेंगे, और जब माया जीत और प्रकृति जीत बन जाएंगे तो विकर्मा जीत बनेंगे, विकर्मा जीत बनेंगे तो बैटरी चार्ज होने लगेगी तेजी से, अभी हमारी बैटरी चार्ज नहीं होती है, हमारी बैटरी चार्ज जितनी चार्ज होती है उतनी डिस्चार्ज हो जाती है, अगले दिन देखो तो आज भी वैसा का वैसा ही मिलता है ना, कल जैसी स्थिति थी आज भी वैसी स्थिति है, आज जैसी स्थिति है कल भी वैसी स्थिति होगी, परसों देखें तो वैसी स्थिति होती है, 20 साल पहले जैसी स्थिति थी, हाँ थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है किंतु बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई हो, बहुत चेहरा बदल गया और चलन बदल गई, बहुत परिवर्तन, ऐसा नहीं होता है, होता है क्या, नहीं होता, थोड़ा परिवर्तन हुआ किंतु बहुत परिवर्तन हो गया हो, दृष्टि एकदम ऐसी हो गई, रूहानी हो गई हो, बोल हो एकदम हमेशा 100% मीठे हो गए हो, हुआ मीठा हो गया एकदम, अपने बच्चों से पूछना है ना, माँ कैसे बोलती है मेरी ना, बताएंगे वो आपको कैसे बोलती है, तो हमारी ऐसी बन गई हो, ऐसा नहीं हुआ ना, तो तब विक्रमा जब विक्रम पूरे होने खत्म हो जाते हैं तो एकदम हम लाइट हाउस माइट हाउस बन जाते हैं, राइट, तब स्मृति स्वरूप बनते हैं, तब हम हमारी रूहानी वृत्ति बनती है कि हमारे आसपास रूहानी वायुमंडल बन जाता है, वृत्ति से वायुमंडल बनता है, तब हमारी 100% शुभ भावना शुभ कामना बनती है, तब हमसे चारों तरफ सबके लिए 100% शुभ वाइब्रेशन निकलते हैं, और फिर हमसे हमारे संकल्प पावन 100% पावन श्रेष्ठ शक्तिशाली कल्याणकारी संकल्प बनते हैं, और जब ऐसी स्थिति बनती है तो फिर हम कर्मातीत बनते हैं। कर्मातीत बनने के बाद जब हमारे सारे विकर्म खत्म हो जाते हैं और सारा हमारा कोई हिसाब किताब खत्म हो जाता है, तब हम अव्यक्त बनते हैं, तब हमें बोलने की आवश्यकता नहीं रहती। अव्यक्त माना तब हमें अव्यक्त माना बोलने की जरूरत नहीं है, हमारे संकल्प काम करने लगते हैं, संकल्पों से यहां बैठे बैठे हम संकल्प से कहीं भी कोई आत्मा है उसको टच होगा, उसको साक्षात्कार होगा, उसके संकल्प हमें टच होंगे, हम यहां से संकल्प के द्वारा उसको वाइब्रेशन पहुंचा देंगे, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वहां उनको साक्षात्कार होगा, फरिश्ता से उनका साक्षात्कार होगा और उनको उनका जो कार्य संपूर्ण हो जाएगा, उनकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, तब हम अव्यक्त, फिर बाद में फरिश्ता, फिर फरिश्ता बन के अंत के समय हम फरिश्ता बन जाते हैं, और फरिश्ता बन के जब बाबा के साथ जाएंगे तो फरिश्ता बन के जाते हैं सूक्ष्म वतन में, फिर वो सूक्ष्म शरीर छोड़ते हैं और फिर परमधाम, ऐसे मच्छरों का झुंड जाता है, ऐसे परमधाम की तरफ मच्छरों का झुंड उड़ जाता है, फिर बाबा के साथ परमधाम चले जाते हैं, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सत्युग में आते हैं, है ना, जैसे जैसे आत्मा की बैटरी होती है पावरफुल होती है उसके हिसाब से हम नीचे उतरते हैं। तो सबसे पहली चीज है कर्मेंद्र जीत बनना, राइट। अब कर्मेंद्र जीत कैसे बने, हमारा अभी कौन सा जन्म चल रहा है, कौन सा जन्म, 84वां जन्म चल रहा है ना, इससे पहले ज्ञान में आने से पहले हमारा कौन सा जन्म था, 83वां जन्म था ना, तो 84वां जन्म कैसे है, हमारा अलौकिक जन्म है, दिव्य जन्म है, मतलब शिव बाबा ने हमें ब्रह्मा के मुख द्वारा ये 84वां जन्म दिया, कैसा जन्म दिया, दिव्य जन्म है, राइट। मान लीजिए हम 30 साल से ज्ञान में है, या हम सपोज कोई 25 साल से है, तो 25 साल से आपका दिव्य जन्म है, ये 84वां जन्म कितने साल से शुरू हुआ, 25 साल से शुरू हुआ, और मान लीजिए जब आप आए थे ज्ञान में 30 साल के थे, तो 30 साल आपके 83 जन्म के हुए, और अभी 55 साल के आप हुए, तो अभी 25 साल 84 जन्म के हुए, 84वें जन्म के, और 30 साल पिछले कौन से जन्म के, 83वें जन्म के, तो ये रिटर्न जर्नी है, रिटर्न जर्नी समझते हैं, रिटर्न जर्नी माना अब जब से बाबा का ज्ञान आपको मिला तब से रिटर्न जर्नी शुरू हो गई, और रिटर्न जर्नी माना आपका पहले 84वें जन्म के पाप विक्रम विनाश करेंगे, फिर 83वें जन्म के विक्रम विनाश होंगे, फिर 82वें जन्म के विक्रम विनाश होंगे, फिर 81वें जन्म के होंगे, और फिर 80वें, ऐसे मतलब जब 21वें जन्म तक पहुंच जाओगे तो क्या होगा, तब आप कर्मेंद्रीय जीत बनेंगे, कर्मातीत नहीं बनेंगे, तब कर्मेंद्रीय जीत बनेंगे, तब आप जैसे ही बाबा ने बताया मुरली में कि बच्चे जब तुम्हारी त्रेता की स्टेज पहुंचेगी, मतलब सत्तों की स्टेज तक पहुंचेंगे, तो कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगे, कर्मेंद्रिय की चंचलता समाप्त हो जाएगी, और तब हमारी तब हम कर्मेंद्र जीत बन जाएंगे, राइट। तब हमारी आंखें, हमारी नाक, हमारा कान, हमारा मुख और हमारी त्वचा, तब उसमें रूहानियत भरी होगी, आंखों में दृष्टि हमारी क्या होगी, हमें देखने से ही आत्मा नजर आएंगे, मतलब हम एक दूसरे को देखेंगे तो आत्मिक भाव से ही देखेंगे, राइट। हमारी वृत्ति कैसी हो जाएगी, एकदम 100% रूहानी हो जाएगी, वृत्ति कैसी हो जाएगी, वृत्ति जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, है ना, फिर दृष्टि वैसी हो जाएगी, फिर हमारी भावनाएं भी शुभ 100% शुभ हो जाएंगी और संकल्प भी शुभ चलेंगे, तो वो हमारी स्टेज बाद में आएगी, पहले हमारी स्थिति कैसे होगी, पहले हमारी कर्मेंद्र जीत मतलब तब होगा जब हम त्रेता के, क्योंकि अभी हमारी कर्मेंद्र क्यों गड़बड़ करती है, क्योंकि 63 जन्म उनको आदत पड़ गई क्या करने की, विकर्म करने की, ना रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड हुआ है, कोई देखते ही हमें क्या दिखाई देती है, देह दिखाई देती है ना, उसकी याद, उसकी जो अंदर रिकॉर्डिंग है, वो फाइलें खुल जाती हैं, तुरंत फाइलें खुल जाती है, देखते ही फाइलें खुल जाती है। आप अपने घर में रहते हैं, बच्चे हैं आपकी, युगल है ना, पति है या पत्नी है या माँ या बाप है, तो देखते ही क्या बात याद आती है, उन्होंने उनके साथ उन्होंने आपके साथ जो कर्म किए हुए हैं, या आपने उनके साथ जो कर्म किए हुए हैं, वो एकदम फाइलें खुल जाती है, کتنا بھی جان لیا ہوا ہے تو بھی کیا ہوتا ہے, کھلتی نہیں کھلتی, باتیں سامنے آ جاتی ہیں نا. تو 84ویں جنم میں, جب سے 84ویں جنم, 25 سال سے ہم گیان میں آئے یا 30 سال سے گیان میں آئے, تو جب سے بابا کا بننے کے بعد جب ہم نے وکرم کیے ہیں تو اس کا کتنا سچ کتنا گنا ہو گیا, 100 گنا ہو گیا. تو اس جنم میں 25 سال میں کتنے وکرم ہو گئے ہوں گے, جتنے ہوئے اس کو 100 سے گنا کر دو. بابا کہتے ہیں سر پر بوجھا بہت ہے, تھوڑا ہے زیادہ ہے بوجھا, تھوڑا ہے کہ زیادہ ہے. یہ 84ویں جنم کے کتنے پاپ ہیں, اس میں تو ایک جنم میں ایک گنا ہوا ہے نا, 83ویں جنم میں وہ ایک گنا. اب جب سے بابا کے بنے تب سے کتنی ابگیائیں کی ہوں گی, کتنا ہو گیا. اور جب ریٹرن جرنی میں جاؤ گے تو ریٹرن جرنی میں جاتے جاتے کیا ہوگا, اگر کسی بھی جنم میں ریٹرن جرنی میں, مان لو آپ 35ویں جنم میں پہنچ گئے اور وہاں جا کے کوئی پاپ کر لیا, کوئی وکار میں چلے گئے, تو کیا ہوگا, 35 میں سیدھے سیدھے 84 میں واپس آ جاؤ گے. سانپ نے کاٹا کہاں پہنچ گئے, سیدھے سانپ سیڑھی کا کھیل پتا ہے نا, واپس 84 پہ آ گئے ہے نا. پھر واپس کیا شروع کرو گے, 84 83 82 81 نا, 80 نہیں ایسا ہوگا نہیں ہوگا. تو اس لیے, اور اس میں ایک اور بھی بات ہے, ہر جنم میں تین فیز ہوتی ہیں, ہر جنم میں تین فیز ہوتی ہیں. کون کون سی, ایک تو بڑھاپا, ریٹرن جرنی کی بات کریں, الٹی بات کریں, پہلے بڑھاپا آئے گا. جب ہم مان لیں 83ویں جنم میں گئے تو پہلے 83 کو چھوڑ دیجیے, 82 میں گئے تو پہلے بڑھاپا آئے گا, پھر جوانی آئے گی, پھر بچپن آئے گا. تو بڑھاپے میں کم پاپ ہوتے ہیں, مطلب 15 سے 55 سال سمجھ لو, 15 سے 55 سال جوانی, 55 سال کے بعد بڑھاپا, اور 15 سال سے نیچے بچپن. تو 55 سے لے کے 70 سال آپ کی عمر تھی, تو 55-70 سال آپ نے جو کرم کیے ہوں گے, آدمی یوزلی تھک جاتا ہے, تھوڑا شانت ہو جاتا ہے, دیکھ لیتا ہے سماج کو, سمجھ لیتا ہے, تو تھوڑے سے پاپ کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, 55 سال سے, اور پھر 55 سے لے کے 15 تک واپس خوب سارے پاپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور 15 سال کی عمر کے نیچے پھر کم پاپ ہو جاتے ہیں. رائٹ, تو تین فیز ہوں گے نا لائف کی. تو ہوتا کیا ہے, ابھی ہم چلتے ہیں, چلو اب ریٹرن جرنی پہ چلتے, کیسے ہم چلے نا. اب ہمیں گیان ملا, ٹھیک ہے, ہمیں جیسے گیان مل گیا اور گیان ہم نے شروع کر دیا, گیان کو ہم نے, تو بابا کی چار ڈائریکشنز ہیں, چار نیم ہیں, چار مریادائیں, اگر ہم پہ پورا پورا چلتے. چار نیم کون کون سے ہیں, تو آپ یہ تو سمجھ گئے نا, پہلے کرمیندر جیت بنیں گے, یاد رہے سیکوینس, یاد رہے, پہلے کرمیندر جیت بنیں گے, پھر مایا جیت بنیں گے, پھر اس کے بعد پرکرتی جیت, پرکرتی بنائے شریر ہے نا, یہ شریر پانچ, شریر کے پانچوں تتو جو پرکرتی کے, یہ شریر پلس ایک پانچوں تتو پرکرتی کے, ان کا کنیکشن آپس میں دونوں کا نا, تب یہ پانچوں تتو ہمارے اپنا شریر روپی پانچ پرکرتی بھی ہمارے بس میں ہو جائے گی پوری. تب یہ آپ کو بلڈ پریشر ہے, ڈائبٹیز ہے, ہارٹ کی بیماری ہے, کمر خراب ہے, گھٹنے خراب ہیں, تب آپ کو تنگ نہیں کریں گے, حالانکہ خراب ہوں گے تو بھی آپ کی استھتی خراب نہیں کریں گے. رائٹ, مایا جیت بننے کے بعد ہے نا, پھر آپ کے کچھ بھی بیماری آپ کو ہی نہیں, ابھی تو آپ کو بیماری تنگ کرتی ہے نا, آپ کو شریر میں بیماری, گولی نہیں ملے تو کیا ہوگا, اس میں گولی نہیں ہوں گی, انجیکشن نہیں ہوں گے ہے نا, تو ڈائبٹیز بھی ہوگی, بلڈ پریشر بھی ہوگا, گھٹنے بھی خراب ہوں گے, گولی کھانے کو نہیں ملے, درد والی گولی نہیں ملے گی ہے نا, پٹے بھی شاید نہ ملے باندھنے کی, پر اس میں ہماری پرکرتی جیت استھتی ہوگی, تو ہم پرکرتی جیت استھتی میں وہ شریر ہم کو تنگ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, ہماری پاس اتنی پاور ہوگی کہ ہم اس کو خالی میڈیٹیشن سے چلا سکیں گے, یوگ سے چلا سکیں گے, اس میں گولی نہیں ہوئی, گولی ملیں گی اس میں, کیمسٹ کی دکان کھلی ہوگی, ہاسپٹل کھلے ہوں گے, ہاسپٹل اس میں ہوں گے نہیں وہ سمے پر ہے نا, اس سمے ہم کو یہیں بننا پڑے گا, یہیں سب کچھ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہیں پر ہماری استھتی ایسی ہوگی تو ہم پرکرتی جیت ہوں گے, شریر استھر ہو جائے گا, اور یہ پانچوں تتو بھی ہمارا ساتھ دیں گے, کیونکہ چاروں پانچوں تتو بہت ہلچل کر رہے ہوں گے اس سمے, بہت ہلچل میں ہوں گے, آکاش, اگنی, وایو, جل اور پرتھوی, پرتھوی ہل رہی ہوگی, جل سونامی آ رہی ہوں گی ہے نا, وایو طوفان چل رہے ہوں گے بہت زور سے ہے نا, آگ, سورج کی گرمی بہت زیادہ بڑھ جائے گی ہے نا, یا بہت زیادہ برسات ہو رہی ہوگی ہے نا, اور یا پھر آکاش میں بھی اوپر سے کبھی کچھ گر جائے گا, کبھی اوپر سے کبھی کچھ گر جائے گا, کبھی کچھ گر جائے گا, کبھی بھی بم گریں گے تو کبھی کوئی اوپر سے سیٹلائٹ نیچے گر جائے گا ہے نا, سیٹلائٹ سمجھتے ہیں جو اوپر اوپر گئے ہوئے نا, بہت سارے سیٹلائٹ اوپر بھیجے ہیں ہم لوگوں نے, بھارت نے بھیجے ہیں, ودیشوں میں بھیجے ہیں, वो कहाँ कहाँ गिरेंगे पता नहीं, कौन कौन कहाँ गिरेगा पता नहीं है ना, कौन सी चीज कहाँ गिर जाएगी पता नहीं, उल्काएं गिरेंगी टूट टूट के जमीन ना, बहुत बड़े बड़े उल्काएं जमीन पर गिरेंगी, तो कौन सी चीज कहाँ गिरेगी, आसमान भी कहीं से अनकंट्रोल हो जाएगा, कहाँ कहाँ से क्या गिरेगा पता नहीं, ये तो मेरे ऊपर नहीं गिरे है ना, मैं दबके नहीं मरूं, ठीक है, इच्छा से शरीर छोड़ू, मेरी स्थिति ऐसी बन जाए कि मैं इच्छा से शरीर छोड़ के चला जाऊं, बाबा की याद में चला जाऊं, अचानक चला जाऊं नहीं, बाबा की याद में जाऊं, इच्छा मृत्यु का वरदान हो, ठीक है ना, जैसे भीषम को था ना, तो ऐसा ऐसा मेरी स्थिति हो ना, तो तब हम इच्छा से शरीर छोड़ के जाएंगे, अपना कार्य पूरा करके, ऐसे नहीं कार्य पूरा बिना पूरा किए चले जाए, है ना, सब सीन देख के जाएंगे ना, तो ऐसी हमारी स्थिति हो, क्योंकि अंत में सेवा बहुत करने का चांस मिलेगा, हिसार वालों करनी है इतनी सेवा लास्ट में करनी, तो ऐसी स्थिति बना के मतलब ये अंत का सीन होगा, जब प्रकृति जीत बनेंगे तो फिर विक्रमाजीत बनेंगे, तो प्रकृति कुछ ना कुछ करेगी तो हमारे संकल्प चलेंगे, ऐसा नहीं हो जाए वैसा, तो फिर विक्रम बन गया ना, रोज अब हम चलते हैं शुरुआत से, है ना, तो पहले कर्मेंद्रीय जीत बनना है, ठीक है, कर्मेंद्रीय जीत, अब इस पे क्या करना पड़ेगा हमको, 63 जन्म के पाप खत्म करने, तो रिटर्न जर्नी में क्या क्या होगा, चार नियम चार मर्यादा को शुरू से पक्का पकड़ के चलते हैं, चार नियम कौन से हैं हमारे, पावरफुल अमृत वेला, सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी अमृत वेला मिस ना करे, पहले एक ध्यान रख लें कि मनुष्य से ब्राह्मण बने ना हम, अगर मनुष्य शब्द की परिभाषा ही समझ ले तो हम क्या है, मनुष्य माना मन के वश में, मनुष्य मन उष्य माना मन के वश में, उष्य माना था स्लेव दास, मन का दास, मन जो कहे वैसा कर लेना, मन ने कहा ये देख लो देख लिया, मन ने कहा ये खा लो खा लिया, मन ने कहा ये पढ़ लो पढ़ लिया, मन ने कहा ये सुन लो सुन लिया, मन ने कहा सुन लो सुन लिया, मन ने कहा छू लो छू लिया, मतलब मन में जो मन में क्या भरा हुआ है, मन में ही विकर्म भरे हुए हैं, सारी जो मेमोरीज हैं हमारी, सारी जो संस्कार भरे मन में ही भरे हुए हैं, विकारों के बस जो कर्म के सब रिकॉर्ड कहां पर है, मन के अंदर है, राइट, तो मन इन कर्मेंद्रियों की तरह हमसे विकर्म कराता रहा है मनुष्य, अब बाबा ने क्या किया हमको, बाबा ने हमको मनुष्य से क्या बनाया, ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब क्या है, ब्रह्म माना बेहद, ब्रह्म माना जैसे ब्रह्मा को कहते हैं ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मा, ब्रह्म माना बेहद, माँ बेहद की माँ, सबकी माँ है ना, तो वो सबकी माँ है, ऐसे ही हम कौन है, बेहद, ब्रह्म माना बेहद, मन जिसका मन बेहद में रहे, जिसका मन कहाँ हो, जिसकी मन और बुद्धि बेहद में हो, ये देह हद है, ये देह हद है कि हद है कि नहीं, ये देह हमारी हद है ना, लिमिट है ना इसकी, इसकी लिमिट है ना, देख है जी, नहीं मैं कह रहा हूं मनुष्य जो है, मनुष्य की जो मन और बुद्धि कहाँ रहते हैं, मनुष्य की मन और बुद्धि कहाँ रहते हैं, हद में रहते हैं, जैसे देह हद में है, देह है उसकी लिमिट है ना, देह के संबंध है उसकी भी हद है, लिमिट है ना, किसी व्यक्ति से आपका संबंध है कितना कितना करेगा आपके लिए, हद है ना, एक से एक ही संबंध हो सकता है, माँ का बाप का टीचर का सतगुरु का, मतलब सब संबंध तो एक से नहीं हो सकते हमारे, और वो संबंध भी लिमिट में हो सकते हैं, वो भी कंडीशनल है, कंडीशनल है ना, आज आपसे मतलब है तो है, नहीं है तो नहीं है ना, तो वो संबंध भी कंडीशनल है ना, स्वार्थ के वश है ना, तो उसमें हद है ना, तो देह के संबंध और देह के स्वभाव क्या है, पांच विकार, आज इन मनुष्य की बुद्धि कहां रहती, पांच विकारों में रहती, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये देहभान का स्वभाव है, और देह की आदतें क्या है, देहभान की आदतें क्या है, आलस, सबसे पहले आलस आदत कौन सी है देहभान की, आलस्य, दूसरी अलबेलापन, चलो छोड़ो 5 बजे नहीं, आज 4 बजे बाबा कहता सारा संगम ही अमृत वेला है, 5 बजे अमृत वेला कर लेंगे, रात को देर सोए थे अभी 5 बजे उठते हैं, अलबेलापन, चलो मुरली चलो घर में ही पढ़ लेंगे, सेंटर जाने की आवश्यकता है, पीस ऑफ माइंड पे आती है ना मुरली, पीस ऑफ माइंड पे सुन लेते हैं ना, नहीं अलबेलापन है ना, आप जब नाश्ता करते तो एक फोटो देख लो खाने की है ना, खाने की फोटो देख के अच्छा हो गया बस नाश्ता हो गया, नहीं ऐसे
क्योंकि सेंटर पे जाने से वाता वो वायुमंडल है सेंटर पे, वो जो बहन जो भी भाई बैठ के मुरली सुना रहा है उसके द्वारा बाबा पावर भी दे रहा है धारणा का धारण करने की, है ना। ये हमारा सेंटर जो है वो डबिंग रूम है, डबिंग रूम समझते हैं, वो जो है जैसे होता है ना वहां जो वॉयस रिकॉर्ड होती है, आसपास की आवाज नहीं होती कोई भी, वो पावरफुल वातावरण होता है वहां, एक्यूरेट वॉयस रिकॉर्ड होती है, कई और वॉयस रिकॉर्ड करो तो बीच में नॉइज आ जाता है ना। तो वो जो है वो जो क्लासरूम है वो पावरफुल क्लासरूम है, वहां पावरफुल वाइब्रेशन है, वहां हर समय तपस्या चलती रहती है, योग होता रहता है। आपके घर में ऐसे में योग नहीं होता है, जहां पे बैठ के आप मुरली पढ़ोगे अपने ड्राइंग रूम में कहीं भी बेडरूम में, वहां पे क्या होता है, कैसा वायुमंडल है वहां पर, रिकॉर्ड ही नहीं होगा, पढ़ लोगे याद ही कुछ नहीं रहेगा। तो वो जो क्लासरूम में जाने का महत्व है ना, क्लास में जाके बैठ के मुरली सुनने का महत्व है ना, टीवी पे सुनने का महत्व नहीं है या उस पर इंटरनेट पे देखने का, मोबाइल पे आजकल देखते हैं, व्हाट्सएप पे देख लेते हैं, मुरली पढ़ लेते हैं, हो गई व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप पे खाना भी खा लो ना, आप नाश्ता कर लो व्हाट्सएप पे, बात है फोटो आती कई बार व्हाट्सएप पे ना, वो ब्रेकफास्ट की प्लेट होती है वो देखो अंदर से ऐसे ओम शांति, ब्रेकफास्ट हो गया ना, उसे शक्ति नहीं मिलती है ना, तो मतलब ये अलबेलापन है ना, और अपना दोष देखने के बजाय दूसरों के दोष देखते रहते हैं, दूसरों के दोष दिखाई देते हैं, दूसरे में एक अवगुण है, मेरे अंदर 99 अवगुण है, तो अपना 99 अवगुण नजर नहीं आते, उसका एक अवगुण नजर आता है, रिवेंजफुल बिहेवियर, बदला लेने की भावना, किसी थोड़ा सा हमारे साथ नहीं चले तो उसके पहले पीछे पे हम रिवेंजफुल हो जाते हैं, शक करना ये देहवान की आदत है, अनुमान लगाना, चिंता करना, भय रखना, प्रेशर में रहना, जल्दीबाजी, हर बात में मैंपन, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, जैसे मेरे को ऐसे होना चाहिए, है ना, और ईर्ष्या द्वेष करना, ये देवान की आदत है, संस्कार है और देह के पदार्थ। मनुष्य की बुद्धि में चार चीजें ही रहती है, देह के संबंध, देह के स्वभाव, संस्कार, देह के पदार्थ, इन चारों की लिमिट है, हद है। किंतु ब्राह्मणों की क्या होना चाहिए, ब्राह्मणों के अंदर बेहद की बुद्धि और बेहद का मन है, मतलब हमारी बुद्धि और मन सदा बेहद में रहना चाहिए, आत्मा बेहद है, परमात्मा बेहद है, हमारे सर्व संबंध परमात्मा से बेहद के हैं, और संसार रूपी नाटक बेहद है, ठीक है। तो हमारी बुद्धि में ये रहना चाहिए ABCD, है ना, A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन और संबंध, सर्व संबंध मेरे बाप के साथ है, और D फॉर ड्रामा, संसार एक नाटक है, इस नाटक में हम सब एक्टर्स हैं, हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है इस संसार रूपी नाटक में। कर्मों का हिसाब किताब और कर्म का क्या हिसाब किताब से मैं बताऊं, तो कर्मों का हिसाब किताब का मतलब है, अगर आपने किसी से 500 रुपया 100 साल पहले उधार लिया था और आपने वापस नहीं किया, तो 100 साल के बाद कितना बन गया वो, सर मैंने हमारा CA है हमारे ना शांतिवन में, तो उससे मैंने एक बार कहा था हिसाब लगाने को, मुझे बताया कितना ब्याज बन जाता है, तो उसने बताया डॉक्टर साहब उसका ब्याज बनता है 52,48,00,000 रुपया, कितना बनता है 52,48,00,000, ज्यादा नहीं बनता है, 500 रुपया तो मूलधन तो दिया है ना, और ब्याज कितना बन गया 52,48,00,000 रुपया। तो हम योग से बाबा की याद से ये ब्याज को माफ करवा सकते हैं, मूलधन तो देना ही पड़ता है, मान लीजिए वो जो आत्मा है मेरा बच्चा बन के आ गई, मेरा बेटा बन के आ गई, या मेरी पत्नी या मेरा पति बन के आ गया, ठीक है, मेरा भाई बन के आ गया, दोस्त बन के आ गया, अब मुझे वो 500 रुपये उसको वापस देने पड़ेंगे, वो कहता भाई साहब जरा पिताजी मेरा वापस करो ना 500 रुपया, तो 500 रुपये दे दिया, किंतु अच्छा वो ब्याज के समय तो वापस करो ना, हिसाब किताब का मतलब बहुत जरूरी है ना, तो 52,48,00,000 रुपया देना पड़ेगा। अब इसलिए देखा होगा आपने बच्चे माँ बाप बच्चे की सब सेवा करते हैं, सब कुछ करेंगे, तो भी बच्चा क्या बोलता है, कुछ भी नहीं किया ना मेरे लिए, क्या किया, मेरा जीवन ही खराब कर दिया तुमने, क्योंकि हमने 1 करोड़ भी खर्च कर दिया तो बाकी कितना बाकी रह गया, 51 करोड़ तो अभी है, तो हमने क्या किया, कुछ किया क्या, अगर आपने एक गाली दी थी किसी को आज से 100 साल पहले, तो कितनी हो गई अभी सोचो ब्याज लगा के, کتنی ہو گئی ہوگی آپ کتنی گالی دے گا آپ کو ابھی میں نے آپ گالی کھاتے ہی رہو کھاتے رہو تو اس کا آپ کا پیٹ خالی گالیوں سے بھر سکتا ہے نا نہیں وہ تو بھی سنتوشت نہیں ہوگا کئی بار نہیں ہوتا ہم سمبندھ میں کیا سوچتے ہیں ارے اتنا تو سہ رہے ہیں کچھ نہیں بولتے تو بھی ایسے ہم سے بولتے ہی رہتے ہیں ہمیں کرتے ہی رہتے ہیں تنگ کرتے ہی تنگ کرتے ہی رہتے ہم خود کچھ نہیں کرتے سب کچھ ہم کو دے دیتے تو بھی لوگ شانت نہیں ہوتے نہیں ایسا ہوتا ماں باپ زیادہ فیل کرتے ہوں گے آپ کو پتا ہوگا نا آپ میں سے سینئر لوگ ہیں سمجھتے ہوں گے نا پتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اوپر سے جا رہی ہے نا تو اتنا حساب کتاب ہے آپ ساری عمر کرتے رہو تو بھی اپنے آپ کو بیچ بھی دو تو بھی پورا نہیں کر سکتے ہو نا تو مطلب یہ جو ہے کرموں کا حساب کتاب بہت بہت گہرا ہے اس لیے تو امرت ویلا پاورفل اور پھر دوسری مرلی پاورفل ٹھیک ہے اور مرلی سینٹر پہ مطلب سینٹر پہ آ کے مرلی سننا آوشک ہے مجھے بڑی دادی کی بات یاد آتی ہے بڑی دادی ایک بار ایسی مجھے کبھی کبھی دادی ویسے بہت کم بڑی دادی جو کیا تھی وہ میں روز صبح دادی کے پاس جاتا تھا 95 سے تو روز جاتا تھا 95 سے آنے کے بعد 95 میں جب ہاسپٹل میں آ گیا تو میرا روز دادی کے پاس صبح 8 مرلی پوری ہوتے ہی جانا ہوتا تھا روز وداؤٹ فیل اور دادی کے پاس میں جانا ہوتا تھا دادی کا آرڈر تھا کہ میرے پاس روز آؤ صبح صبح تو دادی کبھی تو اپنے کرموں سے سکھاتی تھی تو کبھی کبھی بول دیتی تھی کوئی بات ہو ایک دادی نے مجھے کہا دادی گپتا جی جانتے ہو یہ جو اشرتن کون بنتے ہیں میں دادی مجھے تو نہیں پتا کون بنتے ہیں اچھا 108 کی مالا میں کون آتے ہیں میں نے کہا دادی تو آپ بتاؤ نا آپ پتا آپ کو آپ انوبھوی ہو میں تو بچہ ہوں چھوٹا دادی کہتے گپتا جی جو جن کو بابا اور بابا کی مرلی سوانسوں سوانس یاد رہتی ہے بابا کی مرلی اور بابا سانسوں سانس یا ایک دن میں کتنے سانس لیتے ہیں ہم ایک دن میں ہم 16,000 سانس لیتے ہیں 14 سانس دن میں ایک منٹ میں اور رات میں 10 سانس ایک منٹ میں آپ خود بھی حساب لگائیں گے 16,000 سانس بنیں گے ٹھیک ہے تو جو دن میں 16,000 بار ان کو بابا یاد آتا ہے دن اور رات میں ہے نا کتنی بار اور 16,000 بار مرلی کے پوائنٹ بدھی میں ابھرتے ہیں آج بابا نے یہ کہا آج بابا نے یہ کہا جیسے آج کی مرلی تھی نا ایشوری فیملی ہے نا ایسی فیملی کم ملے گی کہاں ملے گی ہے نا بابا بیٹھا ہے بچے بیٹھے ہیں تو وہ نشہ بردان تھا جیسے آج کا سلوگن تھا بار بار بدھی میں جیسے نا بجتی رہے مرلی بجتی رہے بار بار بجے جب دیکھو مرلی بج رہی جب دیکھو مرلی بج رہی ہے دادیوں کو کیا بجتا ہے مرلی میں دادیوں کو کیا بجتا رہتا ہے ہمیشہ جس سے میں دادی کے پاس جاؤ ابھی جان کی دادی کے پاس جب جاؤ تو مرلی کے پوائنٹ ہی بتائیں گے ہے نا آج بابا نے کہا شام کو آئے گی دادی کلاس میں آئے گی کلاس کرانے تو مرلی سنائے گی نا مرلی کے پوائنٹ پہ منتھن سارا دن کیا ہوگا وچار ساگر منن چنتن منتھن کیا ہوگا سب تو وہ شام کو بتائے گی مطلب جن کے سوانسوں سوانس مرلی جن کے اندر تو اسپتال میں جن کو آنا ابھی بھی آ سکتے ہو نا تو دن میں کتنی بار مرلی ریوائز کرنی پڑے گی زیادہ بار نہیں 16,000 بار نا تو پرشاد بابا دادی نے کہا آپ بھی بن سکتے ہو میں نے کہا دادی کتنی بار کرنا پڑے گا کہتے 16,000 بار ٹھیک ہے میں سوانسوں سوانس ہمارے ہر سنکلپ میں سوانس میں بابا کی مرلی سمائی بابا مطلب مرلی سمائی میں نے بابا سمایا ہوا رائٹ اور 100 میں آنا ہو تو 108 کی مالا میں آنا تو کیا کرنا پڑے گا میں نے کہا دادی 108 کی مالا میں دادی کہتے 100 بار مرلی کم سے کم ریوائز ہونی چاہیے کتنی بار ہونی چاہیے 100 بار آسان ہے کہ مشکل ہے تو 8 گھنٹے تو ہم سو جاتے ہیں لگ بھگ 8 گھنٹے سوتے 16 گھنٹہ ہم ایکٹیو ہوتے ہیں تو دادی نے کہا 1 گھنٹے میں کم 6 بار مرلی ریوائز ہونی چاہیے پوری مرلی نہیں کم سے کم مرلی کی ایک لائن ہر 10 منٹ میں جیسے مرلی کہاں رکھنی چاہیے دل کے پاس رکھنی چاہیے نا دل کا یہاں پر ہے نا تو دل کے پاس جیب ہوتی نا بھائیوں کے پاس تو ہوتی بہنوں کے پاس نہیں ہوتی تو یہ جو ہے مرلی جیسے لو لیٹر ہے نا بھگوان کا لو لیٹر ہے نا ہمارے لیے ہمارے ساجن ہے نا معشوق ہے نا ہمارا تو لو لیٹر کیسے نکالتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں پریم پتر آس پاس پہلے دیکھتے کوئی ہے تو نہیں پھر جیب سے چپکے سے نکالتے ہیں پھر یوں دیکھتے ہیں دیکھ کے مسکراتے ہیں پھر جیب میں چھپا لیتے ہیں پھر تھوڑی دیر میں پھر دیکھتے ہیں کام کرتے کرتے کوئی آس پاس ہے نہیں نکالا دیکھا مسکرائے پھر چھپا لیا ہے نا. تو کتنی بار کرتے ہیں وہ لو لیٹر, کتنی بار پڑھتے ہوں گے وہ لوگ, دن میں کتنی بار پڑھتے ہوں گے. سچے عاشق جو ہوتے ہیں نا وہ 108 کی مالا میں آتے ہیں. جو بھگوان کی مرلی کا ایک ایک مہاواکیہ بہت بہت بار 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 اس کو گہرائی سے سمجھتے ہیں. اس بابا نے میرے لیے کیا بولا, میرے بیٹھے بابا نے میرے لیے کیا بولا, بابا ہمارے لیے بول رہا نا, میرے لیے کیا بولا, اس میں بابا کی مورت نظر آتی اس مرلی میں نا. تو بابا میرے لیے کیا بول رہا ہے, بابا میرے لیے کیا سوچ رہا ہے, کس سمان سے مجھے دیکھ رہا ہے. تو وہ مرلی کو بار 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 کرتے ٹھیک ہے, اور پھر سو بار مطلب ایک گھنٹے میں 6 بار 10-10 منٹ میں نکالتے رہو, ایک ایک پوائنٹ میں بار بار. اس میں 4 سٹیپ ہوتے ہیں مرلی کے. پہلا ہوتا منن, پہلا منن ریوائز کرنا, جیسے یا تو بدھی میں اپنے آپ نکلے, نہیں تو آپ کاغذ پہ صبح صبح بٹھے بچے کوشچن آنسر گیت دھارنا کے لیے مکھیہ سار وردان سلوگن اتنے ایک 1/4 پیج پہ آ جاتے ہیں نا, وہ اپنی جیب میں رکھو ٹھیک ہے. اور پھر اس کو بار بار یا اور بھی مرلی کے موٹے موٹے پوائنٹ آپ کو اچھے لگے ہو جو آپ کی امپورٹنٹ لائف میں ہیں, تو اس کو بار بار ریوائز کرنا چاہیے ٹھیک ہے. اور اس کو مطلب ڈائری میں لکھنے کی بجائے اپنی بلکہ وہاں رکھو جیب میں رکھو, تاکہ آپ کو جہاں موقع لگا, جہاں موقع لگے ناشتہ کے ٹیبل پہ ناشتہ کرنے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے مرلی نکال لی پڑھی 2-3 لائن پڑھی ہے نا, وردان دیکھ لیا سلوگن دیکھ لیا, پھر جانے لگے آفس کی طرف جانے لگے پھر نکال لیا, یا ناشتہ پورا ہوتے ہی پھر دوبارہ نکال لی, پھر باہر نکلے پھر نکال لی, جیسے ہی موقع لگے لگے رہو. اور تو چلو مشکل لگتا ہو کہ مرلی تو بہت فزیکل ہے نا, اس کو تو کم سے کم بار بار منن کرتے کرتے پھر چنتن کرو مجھے ایسا بننا ہے. پہلے تو شرمن منا سنو, بابا کے سینٹر پہ جا کے سنو, پھر منن کرو, منن کرنا ریوائز کرو, من میں بدھی اگار کے لاؤ واپس, یا پڑھو دوبارہ 1 لائن 2 لائن 3 لائن بس زیادہ نہیں, پوری مرلی کی بات نہیں. پھر اس میں چنتن مانا اس کے جیسا مجھے بننا ہے, چنتن چنتا, چنتا نیگیٹو ہے چنتن پوزیٹو ہے, مجھے ایسا بننا ہے. پھر منتھن, پھر مجھے ایسا بننا کیسے بنوں, پھر من میں اور گہرے چلے جاؤ, گہرے جاتے جاؤ تو اس میں بابا آپ کے ساتھ آ جائے گا. پھر بابا کو پوچھو بابا آپ نے کہا یہ مرلی میں کہ بچے تم ایسے بنو, میں کیسے بنوں, میرا تو کام ایسا ہے, میں تو سارا دن مریض دیکھتا ہوں, آئی سی یو میں تو سیریس پیشنٹ, کوئی رو رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہو, کیسے میں بنوں, تو میں کیا کروں ایسے. تو پھر بابا بتائے گا بچے تم اس کا مطلب یہ تھا, اس مرلی کا مطلب میں نے کہا میٹھے بنو, میٹھے کا مطلب کیا تھا, ایسے بنو, اس طرح سے بنو. تو بابا نے جو ودھی بتائی نا منتھن سے جو مکھن نکلا, اس کو پھر سمرن بنا, اس کو کارے میں لگاؤ, اس کو ایکشن میں لاؤ, ایکشن لاؤ تو ریکارڈ ہو جائے گا, ریکارڈ ہو گیا تو ایک نیا سنسکار بن گیا, وہ پرماتم شریمت پہ نیا ریکارڈ آپ کے پاس ہو گیا, تو وہ آپ کا کیا بن گیا, سمرتی میں ریکارڈ ہو گیا, مطلب سمرتی سوروپ بن گیا. تو ایسے مرلی کے روز 5-6 پوائنٹ مرلی میں ہوتے ہیں, روز ہر مرلی میں 5-6 پوائنٹ ہوتے ہیں بابا کی مرلی میں, تو ان 5-6 پوائنٹ کو اپنے انڈر لائن کر لو, اور اس کے انوسار اس کو بار بار, کبھی ایک پوائنٹ نکالا, کبھی دوسرا پوائنٹ, کبھی تیسرا پوائنٹ, کبھی چوتھا پوائنٹ, کبھی پانچواں پوائنٹ, کبھی چھٹا پوائنٹ. اور مرلی بدھی میں چھپی ہونی چاہیے, پہلے پیج پہ یہ تھا, نیچے بیچ میں یہ ہے, نیچے کو یہ ہے, دوسرے پیج پہ یہ ہے, اوپر کو نیچے بیچ میں, مطلب میرے سے پوچھو تو میں, میرے کو کوئی لائن پوچھو گے نا, میں کہوں گا اچھا ہاں یہ تیسرے پیج پہ اوپر والی لائن میں, اوپر والی 2-3 لائن میں ہے, یہ بات تو بیچ والے پیج میں ہے, یہ پیج تو نیچے کی 3-4 لائنوں میں ہے نا. بدھی میں چھپی ہونی چاہیے نا, بدھی خالی سننے کے لیے مرلی نہیں ہے, یہ بابا مرلی بابا کی ڈائریکشن ہے. تو امرت ویلا مرلی, اور مرلی بھی بہت دھیان سے, اور مرلی کہاں بیٹھ کے سننی چاہیے, سینٹر پہ بھی کہاں, سوکشم وتن کتنے دور ہے ہم سے, برہما بابا کتنے دور ہے ہم سے, ایک سوچ کی دوری پر نا سوچا اور پہنچا نہیں. آپ یہاں سے بیٹھے ہو, یہاں بیٹھے بیٹھے حصار جا سکتے ہو, اپنے بیڈ روم میں جا سکتے ہو, یہاں بیٹھے بیٹھے دکھائی دے رہا ہے, بیڈ روم دکھائی دے رہا ہے, ماتاؤں کچن دکھائی دے رہی ہے, اپنی کچن میں نمک کہاں رکھا دکھائی دے رہا ہے, مسال دانے دکھائی دے رہی, دکھائی دے رہی نا. ایسے ہی ہم کو یہاں بیٹھے بیٹھے سوکشم وتن دکھتا ہے نا, نہیں دکھتا ہے, بابا دکھائی دے رہا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے. تو ایسے بس سوچے اور پہنچا, تو یہاں سے جاؤ سوکشم وتن بابا کی گود میں بیٹھ جاؤ, بابا گود میں بٹھا کے مرلی سنا رہا ہے, میرے کو سنا رہا ہے, ऐसी फीलिंग में बोली, फिर रिकॉर्ड हो जाएगी, फिर मनन करो, फिर चिंतन करो, मंथन और फिर सिमरन। सिमरन मना कार्य में लगाने को सिमरन बोलते हैं, बार बार उसको पढ़ने को सिमरन नहीं बोलते, उसको मनन बोलते हैं, रिवाइज करने को, तो स्मृति स्वरूप हो गया। तो ऐसे हमारे अंदर रिकॉर्ड होता जाएगा। अब हमको तो पहले सुबह सुबह अमृत वेला हो गया, दूसरा मुरली, तीसरा सारा दिन ये मनन चिंतन मंथन सिमरन करते करते जो भी कार्य करते हो, चाहे खाना बना रहे हो, चाहे कपड़े धो रहे हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे दुकान पे बैठे हो, चाहे डॉक्टर हो, डॉक्टरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्टर हो, कुछ भी काम करते हो, वहां पे भी हर समय यही चलता रहे। जो काम है वो ऑटोमेटिक है, जो भी काम आता है उसमें कुछ करने की बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं। बर्तन मांज रहे, बर्तन मांजने में बर्तन हाथ, वो कहते हैं हाथ हाथ काटे दिल यार्ड है ना, दिल वहां लगा रहे और हाथ से काम करते रहे। मैं तो देखता हूँ डॉक्टर में, हम मेडिकल प्रोफेशन में ना, आईसीयू में पेशेंट सीरियस होते हैं, हार्ट अटैक के पेशेंट्स आते हैं, दूसरे पेशेंट्स आते हैं, वो उनका इलाज करते करते बुद्धि हम लगा सकते हैं बाबा के पास, है ना, ऑटोमेटिक है वो सब इलाज, सिंपल है, हमारे लिए तो सिंपल ही है ना, ऐसे सिंपल सिंपल बातें होती ना, बस करी वो ऑटोमेटिक है, बस इलाज कर लो, चलो कर दो इलाज, ये लगा दो, हमें क्या करना उसमें, नर्स है उसको बता दिया तुम्हें लगा दो, ये लगा दो, हो गया, चलो ठीक, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ भी काम करने में टेंशन नहीं है, ऑटोमेटिक है ना, जैसे कार चलानी हो, चलानी आ गई उसके बाद तो सिंपल है, ऐसे हमारे दिन के काम उसमें कुछ बल्कि और एक्यूरेट होते हैं, अगर बाबा की याद में बाबा की मुरली का मनन चिंतन मंथन करते हुए करते हैं और ही ज्यादा एक्यूरेट काम होते हैं, गलती नहीं होती है, क्योंकि 15 संकल्प 20 संकल्प नहीं चलते हैं, उसमें एक्यूरेट वही संकल्प आता है जो काम होने वाला होता है, बुद्धि इधर उधर नहीं जाती है। कई सोचोगे बाबा को याद करते थे काम खराब हो जाएगा, नहीं काम खराब नहीं होता, और ही अच्छे काम होते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं ठीक है। और फिर सोने के पहले चार काम करने होते हैं, पहला लेटर लिखना होता है, क्योंकि हमें 63 जन्म में पाप किए ना, हमसे पाप ऑटोमेटिक हो जाते हैं, हमें करने नहीं पड़ते। कोई व्यक्ति गुस्सा करे तो हमें गुस्सा करना पड़ता है कि हो जाता है, सामने वाला मुझे गाली दे रहा है तो उसको गाली देना सहज है कि चुप रहना सहज है, बता है? संस्कारवश तो मतलब कोई व्यक्ति है मुझे रोज तंग करता है, अच्छा चलो गाली नहीं दी वापस दिया तो मैं नाराज तो हो जाता हूँ ना, मुंह तो बना लूंगा ना थोड़ा सा, या मुस्कुराता रहूं, वो गाली देता रहे मैं मुस्कुराता रहूं, मैं ऑटोमेटिक क्या होता है, ऑटोमेटिक तो फील तो होता है, चलो आपने बोला नहीं कुछ चुप रहे तो फील तो हुआ ना, तो फील होना सहज है ना या नहीं है, फील होना सहज है ना, मुस्कुराना मुश्किल है ना, मतलब मुस्कुराने के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी और दुखी होने के लिए एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, दुखी होने की आदत है ना, रिकॉर्डिंग बनी हुई ना, तो संस्कार तो हमसे जाने अनजाने मेहनत करने के बाद भी गलतियां होती हैं, होती है नहीं होती, तो रोज सोने के बाद चिट्ठी लिखो बाबा को, मीठे बाबा सुबह से लेके आपने जो अच्छा काम किया बाबा, मैं अमृत वेला के बहुत अच्छा अमृत वेला हुआ आज, वैसे उस अमृत वेला में ये थोड़ी सी बात मन में आ गई, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ बाबा, मैं वो कर रहा था ब्रश करते करते मन में ये विचार आ गया, नहीं आना चाहिए था, है ना बाबा, मैं नाश्ता करते करते मेरी बुद्धि ना खाने के स्वाद में चली गई, मैंने एक रोटी ज्यादा खा ली, नहीं खानी चाहिए थी ना, जितनी जरूरी थी उतना, डाइट जितनी जरूरी है उतनी तो खानी ठीक है, कि तो स्वाद के बस एक और ज्यादा खा ली, वो पाप हो गया, ठीक है पाप हुआ नहीं हुआ बाबा, वो ऐसे बोल रहा था, ऐसे बोल रही थी, मैंने उसको ऐसे बोल दिया, मेरे मुंह से निकल गया, तो नोट करना चाहिए ना, तो जो गलती की उसको नोट करो, बाबा मुझसे गलती हुई, बाबा मैंने ऐसे किया, बाबा मैंने आज ऐसे किया, बाबा मैंने आपने कहा था ना आज मैंने बहुत अटेंशन रखा, मुरली आज मैंने 20 बार रिवाइज की, बार बार मैं 20 बार मुरली के पॉइंट रिवाइज किए, है ना, आज बाबा मैंने 25 बार किए, बाबा आज मैंने 8 बार किए, तो मेरे 100 की माला में आने के लिए कितने चाहिए, 100 बार, और 16108 की माला में आने के लिए कितना बार चाहिए, 16000 की माला में आने के लिए 8 बार, एक दिन में 3 पहर होते हैं, 8 पहर होते हैं, 3 घंटे का एक पहर होता है, कम से कम एक 3 घंटे में, दिन में तो 16 घंटे होते हैं, हर 2 घंटे में एक बार मुरली रिवाइज होनी चाहिए, ठीक है 8 में आना हो तो, एक बार मुरली सेंटर में और फिर 8 बार मुरली दिन में, 7 बार मुरली दिन में, ठीक है सर, राजा कितने बनते हैं, त्रेता युक्त 16000 ही राजा रानी बनते हैं, बाकी 9 लाख प्रजा होती है, 9 लाख और 2 करोड़ प्रजा ही होती है, प्रजा में आना हो, सत्यों की प्रजा में, नौ लाख में आना हो तो क्या करना पड़ेगा? बोलो, मुरली में लिखा हुआ है, कम से कम एक बार सुबह अगर 7 से 8 मुरली होते, 7 से 8 मुरली सुनने सेंटर पे आना चाहिए, क्योंकि वो भी फर्स्ट क्लास प्रजा होती है 9 लाख में। अगर 7 की बजे 8 बजे आए तो क्या होगा? एक घंटा लेट आए तो एक जन्म कम हो जाएगा, 83 जन्म रह जाएंगे, ठीक है। अगर दो घंटा 9 बजे आए तो मुरली सुनने, नाश्ता वास्ता बना के नाश्ता करके आए तो मुरली सुनने, अभी पति घर से काम पे चले गए, चलो अभी मुरली सुन के आते, खाना वाना खा के नाश्ता करके पहुंच गए, तो क्या होगा? 2 जन्म लेट हो जाएंगे, ठीक है। अगर 10 बजे पहुंचे सेंटर पे मुरली सुनने तो 3 जन्म लेट है ना। ये एक बात मुरली में लिखी हुई, पता नहीं याद है आपको ये बात? जितने घंटे लेट, जितने यहां कितने घंटे लेट, उतने जन्म सत्युग में लेट। ये बात मुरली का महावाक्य है, दादी ने बताया था वैसे, कि तुम्हें दादी ने याद कराया। गुप्ता जी, ये बात याद है मुरली में आपको? ये मुरली में बात है, बाबा की मुरली में। 11 बजे पहुंचे मुरली सुनने तो कितने घंटे लेट, कितने जन्म लेट? 4 घंटे लेट। हाँ जी, 11 जन्म लेट। क्योंकि आपने क्या प्रायोरिटी दी? किसको? मुरली को प्रायोरिटी नहीं दी, भगवान को प्रायोरिटी नहीं दी, आपने पहले अपने काम को प्रायोरिटी दी। सुबह 6 बजे सुनो तो फिर तो पहले ही आ जाओगे, ठीक है। नहीं नहीं, वो मतलब पहले 6 बजे सुनो, 7 बजे सुनो, वो तो आएंगे तो पहले जन्म में, ठीक है। हाँ, तो अच्छी बात, मतलब पहले जन्म में आ जाओगे, पर पहुंचते रोज पहुंचते नहीं पहुंचते, वो इम्पोर्टेंट बात है, ठीक। मतलब ये मैंने अपना नियम क्या बनाया, मैंने नियम बनाया कि मैं अमृत वेला मुरली पढ़ता हूँ 4:45 बजे, अमृत वेला करते ही, और फिर मैं मुरली सुनने जरूर पहुंचता हूँ क्लास में। बड़े हालांकि उस समय पेशेंट के फोन आ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है अचानक पेशेंट सीरियस हो, तो भी मैं लेट भी पहुंचता हूँ तो पहुंचता जरूर हूँ। मतलब मुरली सुनने सेंटर क्लास में पहुंचना बहुत आवश्यक है, राइट। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आजकल इंटरनेट का जमाना आ गया ना, कई लोग सोचते हैं इंटरनेट पर सुन लेंगे, इंटरनेट पर सुनने का फिर सत्युग में नहीं आओगे, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखना, मुरली सेंटर पे देखो, भगवान को महत्व दोगे तो भगवान आपको महत्व देगा। और नाश्ता करने के पहले मुरली अंदर जानी चाहिए। आत्मा का भोजन क्या है? मुरली। तो पहले आत्मा को भोजन मिल जाए, फिर शरीर को भोजन देना चाहिए। मेरा नियम तो ये है पिछले 30 साल से, कि मैं कभी भी अपने मुंह में कुछ डालता नहीं हूँ। कई बार मुझे जिद भी करते हैं, आप कुछ थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा कुछ, एक कप दूध पी लो, एक सेब खा के चले जाओ, आधा सेब खा के चले जाओ, नहीं, ठीक है, पक्का है ना। तो ये करने के लिए बहुत बहुत आवश्यक है ऐसी स्थिति बनाई जाए। तो जब ऐसे करोगे तो फिर आपकी मुरली पे पक्का होगा, तो फिर ये करेंगे तो सोने के बाद लेटर लिखो बाबा को, एक एक गलती को लिखो, अच्छी बात भी लिखो गलत बात भी लिखो, फिर नीचे साइन करो, और फिर बाबा को ये लेटर फैक्स कर दो। बाबा का हॉटलाइन फैक्स नंबर पता है आपको? बाबा का हॉटलाइन फैक्स नंबर है, टेलीफोन नंबर भी वही है, फैक्स नंबर भी वही है, 000, मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, और सारा दिन जो बीता उसको 0 से गुणा कर दो, तो क्या आंसर आया? 0। लेटर बाबा के पास पहुंच गया, लेटर फाड़ के कूड़े के डब्बे में डाल दो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या करो, फिर अपना चार्ट भरो, याद का चार्ट भरो, आज कितने घंटे मेरी याद रही। चेकिंग कैसे करनी चाहिए? हर घंटे घंटे याद कर चेक करना चाहिए, 4 से 5 कितने मिनट याद रही, 5 से 6 कितने मिनट याद रही, 6 से 7 आप देख सकते हो, दिखाई देगा आपको कितने मिनट में याद रहा उसमें, 6 से 7, 7 से 8 कितने मुरली सुन रहा था, कितने मिनट बाबा की याद में बैठ के मुरली सुनी, 8 से 9 वॉकिंग कर रहा था कितने मिनट बाबा की याद में मुरली सुनी, 9 से 10 नाश्ता कर रहा था, नाश्ता करते टाइम कितने मिनट बाबा की याद में रहा, कितनी देर स्वाद में खो गया है ना, या वो किसी बात में खो गया, 10 से 11 हॉस्पिटल में पेशेंट दिख रहा था, पेशेंट देखते थे कितनी देर बाबा की याद रही। ऐसे आप अपने अपने काम की बात करो, मैं तो अपने बता रहा हूँ, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, ऐसे घंटा घंटा याद का चार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो उस आगे टोटल कर लो साथ में कितने मिनट याद में। अगर हमारा टारगेट क्या, 480 मिनट, कितने मिनट? 480 मिनट बाबा की याद रहनी चाहिए, ठीक है, 4 से 10 बजे के बीच में। तो हमारी जितनी इसका अभ्यास करना चाहिए, स्पेशली 4 से 8 और शाम को 6 से 10, ये 4 घंटे सुबह के 4 घंटे, इस 4 घंटे आप काम पे नहीं होते हो, अपने साथ होते हो, शाम को भी घर आके अपने साथ होते हो, तो चार घंटे स्पेशल कोशिश करो कि चार घंटे याद में रहना है। बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है तो बोलो, नहीं तो नहीं बोलो, बाबा की याद में रहो। और बीच में दिन में फिर कोशिश करो कि मैं वहां भी याद में रहूं, ठीक है। ऐसे अपनी चार्ट लिखो और उसके बाद फिर मुरली पूरी पढ़ो। रात को सोने के पहले दोबारा पूरी मुरली पढ़ो उसी दिन की, तो मुरली सुनने से मन प्लेन हो जाता है। और फिर दो मिनट बाबा को याद कर सो जाओ। ये जो काम कर, और 9:30-10 तक सो जाओ। टीवी बड़ा दुश्मन है ब्राह्मणों का, टीवी मत देखो शाम को। टीवी बैठे सीरियल देखते हो ना, वो देखने छोड़ दो, ठीक है। अगर 108 अगर 16,000 में आना है तो आना है 16,000 में। प्रजा योग करना, राजा योग करना, राजयोग करना। तो इतना कर सकते हो तो देखो तब बन सकते हो, नहीं तो फिर राजयोग, राजयोग का मतलब फिर तो नाम बदलना पड़ेगा ना। भगवान राजा बनाने के लिए आया कि प्रजा बनाने के लिए आया? राजा बनाने के लिए ना। तो मुश्किल नहीं है, एक बार लगन लगाओ तो हो जाएगी। तो इस तरह से आप करेंगे और फिर बाबा को फिर आके नींद बहुत बढ़िया आएगी। नींद कैसे आएगी? अमृत वेला तब अच्छा होगा जब आप रात को टाइम पे सोओगे और अपने मन खाली करके सोओगे, तब आपको डेल्टा स्लीप आएगी। डेल्टा स्लीप आएगी तो सुबह उठ के अमृत वेला होगा, उठते ही बाबा याद आएगा। और उठते ही आपको घड़ी में अलार्म नहीं चाहिए, अपने टाइम कर दो, 3:30 का अपने टाइम दे दो अपने आपको। आप देखो 3:29 पे आपको आंख खुलेगी, प्रैक्टिकल आंख खुलेगी। और उठते ही मुंह धो, गुड मॉर्निंग करके बाबा को मुंह धो के ब्रश करो और बैठ जाओ, एक घंटा पूरा याद करो, पावरफुल। उसमें से कम आधा घंटा बाबा की गोद होनी चाहिए और कम से कम 5 मिनट परम धाम में होना चाहिए, क्योंकि परम धाम में विक्रम विनाश होते हैं। अमृत वेला करना क्यों जरूरी है? जब उठते हो रात में, सुबह सुबह उठते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी 2-3 होती है और शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी 0 है, ब्रह्मा की 1 है। तो आपकी 2 होगी तो कनेक्शन लगेगा। दिन में आपकी फ्रीक्वेंसी 15 है, शिव बाबा की 0, ब्रह्मा की 1, तो आपका कनेक्शन लग नहीं सकता। और विक्रम विनाश होने के लिए 1 से कम फ्रीक्वेंसी चाहिए, मतलब तब आप बाबा की याद में लवलीन हो जाओ, संकल्प चलने बंद हो जाए, तब आपके विक्रम विनाश होंगे। विक्रम विनाश में ना वो मेमोरी की जो फाइल्स काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, वो डिलीट होती जाएगी। जब फ्रीक्वेंसी 1 से कम पहुंचेगी ना, आपके विचार चलने जब बंद हो जाएंगे तो वो पुरानी मेमोरीज डिलीट होती जाएंगी। उसके प्रूफ क्या है? दिन में विक्रम विनाश हुए उसका डिलीट, ये इसका प्रूफ होगा कि वो व्यक्ति जिसको कल देखे गुस्सा आया था, जिसको देखे कल मन में आपकी घृणा आई थी, जिसको देख के आपके मन में कोई विचार चले थे, आज वो व्यक्ति सामने आएगा आपको, उसके बारे में ना तो गुस्सा आएगा ना घृणा आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये प्रूफ है उसका, राइट। उसको देख के याद ही नहीं आएगा इसने ये कल मेरे को बोला था, आप वही मुस्कुरा के मिलोगे। वो गुस्सा कर रहा होगा आपको फील नहीं होगा, क्योंकि जब याद करोगे बाबा को तो आपका और आभा मंडल बड़ा हो जाएगा, कवच बन जाएगा। ये आभा मंडल कुछ और नहीं होता है, जितना बाबा को याद करते हो वो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद और शक्तियां आपके आसपास इकट्ठी हो जाती है, वही आपका आभा मंडल औरा बन जाता है। और आरा कवच की तरह बन जाता है। कोई सामने से गुस्सा कर रहा है, गुस्सा उसने किया और वो उसके गुस्से का तीर यहां तक आया, यहां से लग के वापिस चला जाएगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा। वो मुंह के बोल बोल रहा है आपको, आपको मुंह नहीं आएगा। वो कुछ चिंता की बात कर रहा है, आपको चिंता नहीं आएगी। आप कुछ डर की बात बोल रहे हैं, लोग टीवी वाले डर की बात बता रहे हैं, खबर कोई बोल रहे हैं अरे वहां ऐसा भूकंप आ गया, आपके यहां भूकंप अभी आया था, तो आपको डर नहीं लगेगा। क्या करें? पीस ऑफ माइंड के आगे टीवी के आगे बैठ के योग करते हैं क्या? ये पीस ऑफ माइंड तो बाहर वालों के लिए बना हुआ है, ठीक है। सच पूछो तो पीस ऑफ माइंड हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ बाबा की मुरली को अपना हथियार बनाना है। आखिरी में पीस ऑफ माइंड चलेगा भी नहीं, ठीक है, ध्यान रहे ना। अच्छा अनपढ़ है तो मुरली तो बाबा की, बाबा बाबा तो करना आता है ना, बस बाबा बाबा करती रहो ना, हर समय बाबा बाबा करती रहो। अगर नहीं पढ़े तो भले टीवी खोल लो, कोई बात नहीं, पर वैसे मैं बता रहा हूँ शुरुआत सिर्फ यही चाहिए, ABCD चाहिए, A4 आत्मा, B4 बाबा, C4 कनेक्शन, D4 ड्रामा। इसको जितना रिवाइज करो ना अंदर अंदर, जितना रियलाइज अनुभव करो। ज्ञान और योग में क्या फर्क है? ज्ञान माना मैं आत्मा हूं और योग माना मैं आत्मा हूं, शरीर को चला रही हूं, ये योग है। ये अनुभव करना योग है। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, ये ज्ञान है। और मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, ये अनुभव करना योग है। ठीक है, इसको रियलाइज करना है, विजुलाइज नहीं करना है, इमेजिन नहीं करना है। देखो हमारे जो कई भाई भाई बहन बोलते थे ना, इमेजिन करो, विजुलाइज करो, हमने देखा है जब हम लोग कई बार पहले हम भी करते थे, फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा हम ये करते हैं, आपने तो कभी नहीं कहा। हमारे भाई बहन कहते हैं विजुलाइज करो, ऐसे करो ऐसे करो, बच्चे बाबा ने कहा रियलाइज करो, ये रियल चीज है, इसको रियलाइज करो। जो दूसरे लोग हैं ना वेस्टर्न जो साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, उनको भगवान का ज्ञान नहीं था, उन्होंने कहा विजुलाइज करो, इमेजिन करो, भगवान के बारे जानते नहीं थे, हम भगवान को जानते हैं। ठीक है, हमें इमेजिन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इमेजिन करने से, विजुलाइज करने से अच्छा लगेगा, पर वो अच्छा कैसा लगेगा, जैसे बल्ब की लाइट, ट्यूब लाइट है ना, इस ट्यूब की लाइट में क्या होगा, मच्छर मरेंगे, कीड़े मरेंगे, मक्खी मरेंगे, मच्छर नहीं मरेंगे ना, बल्कि और ही मच्छर बाहर से आ जाएंगे। तो ये जो है, इससे हमें अच्छा तो लगता है, लाइट तो आ गई, अंधेरा तो खत्म हो गया, किंतु विक्रम विनाश नहीं होंगे। इसलिए कई बार दो दो घंटा हम योग करते हैं बैठ के, शांति की किरणें आ रही हैं, प्यार की किरणें आ रही हैं, खुशी किरणें आ रही हैं, मैं ऊपर जा रहा हूं, वहां शिव बाबा बैठे हैं, वहां परमधाम में ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, सूक्ष्म मंत्र में ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, मैं बाबा की गोद में जा रहा हूं, बाबा ऐसे कर रहे हैं, बाबा ऐसे कर, ऐसा अपने आप को बोल रहा हूं, ऐसा कोशिश कर रहा हूं, ऐसे चित्र बना के अपने उसमें अनुभव करने की। कि तू दो घंटा योग करने के बाद बाहर आओगे ना, बच्चे ने आपको कुछ बोला, आपको गुस्सा आएगा, तो आप तो शांति के सागर के साथ गोद में बैठे थे, तो शांति कहां गई आपकी, कुछ कठिन नहीं की क्या वहां पे? तो प्रैक्टिकल नहीं चेंज होता, वो रियलाइज माना अनुभव करो, फील करो। शांति माना क्या, सिर्फ सत्य संकल्पों में रमण करना। प्यार माना क्या, रूहानी प्यार माना क्या, अनकंडीशनल रेस्पेक्टफुल केयर फॉर एवरीवन, निस्वार्थ भाव से आदर के साथ सबकी केयर करना। सुख माना क्या, अतिंद्रिय सुख, इंद्रियों से ऊपर का सुख, देखने के सुख से ऊपर, पढ़ने के सुख से ऊपर, बोलने के सुख से ऊपर, सुनने के सुख से ऊपर, खाने के सुख से ऊपर। जब इन सुखों से परे चले गए, मैं आत्मा अविनाशी, आत्मा अविनाशी परमात्मा की संतान हूं, किसी बात की इच्छा नहीं रही, तो वो है अतिंद्रिय सुख की अनुभूति। उस सुख में खो जाओ, तो ऐसा सुख क्या होगा, आपके अंदर आपके लीवर को मजबूत बना देगा, आपके आंतों को, हाजबे को मजबूत बना देगा, ऐसा प्यार आपके दिल को ठीक कर देगा। किरणें आ रही हैं उससे ठीक नहीं होगा, लीवर पे फर्क नहीं पड़ेगा, आंतों पे फर्क नहीं पड़ेगा, इस खुशी से फर्क पड़े। आनंद माना, आनंद माना बंधन, सब बंधनों के पार चले जाओ, मैं देह और देह के संबंधों के, देह की दुनिया के बंधन के पार, मैं आत्मा परमात्मा के प्यार में खो गई, लवलीन हो गई, देह का भान बिल्कुल खत्म हो गया, तो वो है आनंद। देह का भान जरा ना रहे, देह एकदम भल्की हो, लाइट हो जाए, बस पता ही ना रहे, बस बाबा और मैं, बस तो वो आनंद है। और इस आनंद से फिर शक्तियां आती हैं, परखने की शक्ति। अब परख लिया कि मुझे ये आनंद चाहिए, अमृत के लिए मुझे ये आनंद चाहिए, कल आया था, आज सुबह आया था, कल मैं इसके लिए उठूंगा, परख लिया ना, ये ठीक है, सोना गलत है, निर्णय कर लिया, इसके लिए निर्णय कर लिया, बस उठना ही है, मैं एक घंटा नहीं सवा घंटा योग करूंगा। फिर मैंने इसके लिए क्या कर लिया, विस्तार को सार में समेट लिया। कई बार हम क्या सोचते हैं कि हम आलस कर लेते हैं, आज देर से रात में सोए थे और अभी तो हम थोड़ा सो जाते हैं, 15 मिनट और सो जाते हैं। 15 मिनट सोने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका 5 मिनट आपने, 10 मिनट आपने सूक्ष्म वतन बाबा की गोद में चले गए, तो 10 मिनट वो 10 घंटे के दिन के बराबर हो गए। आप सारी रात नहीं सोए, किंतु आप 10 मिनट जो बाबा की गोद का अनुभव कर लिया ना, और उसमें से 2 मिनट परम धाम में चले गए, तो आपने 10 घंटे आपकी बाबा की जैसे सो लिया, इतना आपको रिलैक्सेशन हो गया। तो नींद नहीं आई, मान ली 2 बजे, हम लोग तो कई बार 2 बजे भी आते रात में, अचानक इमरजेंसी आ जाती, हार्ट अटैक होता, तो रात को 2 बजे अस्पताल से आते, तो बाबा को बोलते बाबा मेरे पास सिर्फ 1.5 घंटा है सोने के लिए, तो 1.5 घंटे मुझे 6 घंटे की नींद चाहिए, तो 6 घंटे की नींद आ जाती है, उसमें बराबर हो जाता है, फिर 3:30 उठ जाते वापस। और बाबा से इतने सुंदर अनुभव हो सकते हैं, बाबा से हर संबंध की अनुभूति होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लेटर लिखो, चार्ट भरो, ये करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, और फिर अमृत वाला पावरफुल होगा, तो तुरंत आपका 2 पे चले जाओ, 2 माना बाबा की गोद, 1 माना परमधाम। परंधाम में जाके विक्रम विनाश होने शुरू हो जाएंगे, और फिर उसके बाद आप उसमें उसके बाद मुरली के पॉइंट रिवाइज कर लो। अगर आप रात शाम को मुरली सुन के आते हो 11 ना, तो शाम को आप 6 बजे जाते हो मुरली में, या आप गीता पाठशाला आपकी है, तो सुबह उठ के नहा धो के फिर मुरली पढ़ो, वही मुरली जो नोट करके लाए ना, कागज पे नोट करके आए, कई बहनें दे भी देती हैं मुरली, फोटो कॉपी दे देती है, तो फिर बैठ के मुरली पढ़ो, जैसे अपने घर में बहुत प्यार से पति पत्नी हो, युगल हो तो युगल बैठ के सुनाए, बहन सुनाए, भाई सुने बैठ के, ठीक है। एक कोने में कमरा बना लो, पर पूरा कमरा ना हो कोई हर्जा नहीं, एक कोना बाबा का बना लो, ठीक है, उसमें बैठ के वहीं पे, वहां और कुछ काम मत करो, उस कोने में बाबा को मुरली बैठ के सुनो, ठीक है, फिर बाकी काम करना शुरू। पक्का ऐसे कर सकते, ये नहीं सोचना हमारी तो गीता पाठशाला 11 बजे तो हम सत्युग में नहीं आएंगे, है ना। आप भले शाम को सुन के आए, तो शाम सुबह सुबह उठ के फिर मुरली सुन के ना फिर आप काम करना शुरू करो। मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि मुरली सुन के काम करना शुरू करो, और सेंटर पे जाओ तो सेंटर का बड़ा महत्व है, सेंटर आसपास से जरूर जाओ। मेरे घर के पास एक गीता पाठशाला थी, वहां मुरली शाम को चलती थी, मेरा सेंटर 8 किलोमीटर दूर था दिल्ली में, तो मैं 8 किलोमीटर दूर जाता था रोज, वो कभी मिस नहीं करता था कभी भी। हालांकि मेरे पेशेंट थे डॉक्टर, 5 हॉस्पिटल में जाना होता था, 3 चैम्बर में बैठना होता था, पर मैं सोचता, मैं देखा 1.5 घंटा मेरा वो मुरली में जाता है ना, आधा घंटा 15 मिनट जाने के 15 मिनट आने के घंटा मुरली सेंटर का, तो सारा दिन मैं शांति में रहता हूँ, शांति प्रयार खुशी से काम करता हूँ, पेशेंट से बड़ा अच्छा रहता हूँ। नहीं तो क्या होता था, मैं जिस दिन मुरली बाई चांस मिस, शुरू की बातें हैं, मुरली मिस हो गई तो सारा दिन ना थोड़ा पेशेंट कुछ बोलेगा ना, दिमाग ऐसा रहता है क्यों बोल रहा है फालतू, ये जाए ना अगला पेशेंट, इतनी लाइन पड़ी है, इतने पेशेंट देखने, तुम मतलब मैं मुझसे नहीं बोलता था तुम जाओ, पर मन में लगता है ये बात फालतू बात कर रहा है, वो बोलता है ये क्या खाऊं डॉक्टर साहब, क्या खाऊं, मैं कहता हूँ मन में बोलता, मुझसे नहीं बोलते थे, तू सब कुछ खा, मेरा दिमाग नहीं खा ना। और आपको पता है पेशेंट क्या बातें करते हैं, आपको तो खैर नहीं पता होगा, मेरे को तो पता है कि पेशेंट खाने की बहुत बात करते हैं ना, खाने की, उसको खाने की सबको बहुत इच्छा होती है ना, बीमार हो तो भी खाने की इच्छा बहुत होती है ना, तो समझे मेरी बात। तो ये 8 बजे तक का टाइम अगर आपका अपना बन गया ना, तो फिर क्या होगा, 8 बजे तक बैटरी चार्ज होगी ना एक बार, तो समझो आपका सारा दिन शांति प्यार खुशी से बीतेगा, 1 घंटे में 4 घंटे जितना काम होगा। अगर 8 बजे तक का टाइम आपने किसी और काम में लगा दिया, मोबाइल में, टीवी में, अखबार में, ध्यान रहे कभी भी 8 बजे से पहले ना मोबाइल देखो, ना टीवी खोलो, ना अखबार देखो, 8 बजे के बाद भले देखो, टीवी तो बिल्कुल देखो ही मत, अखबार देखना, मोटा मोटा अखबार देख लो, और मोबाइल को अपने से दूर रखो, जहां तक हो सके सिंपल वाला मोबाइल यूज करो, व्हाट्सएप बुझ यूज करना बंद कर दो, है ना, व्हाट्सएप बहुत बड़ी बीमारी है, उसमें मुरली आती है, पुरुषार्थ आता है, सब बेकार की बातें, पुरुषार्थ अपना बनाओ, मनन चिंतन मंथन करके अपने पॉइंट निकालो, मुरली के पॉइंट, दूसरे का चबाया हुआ खाना खाने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे का पचाया भोजन अपने आप नहीं पचाओ, ठीक है, आप अपना ही भोजन बनाओ ना, मनन चिंतन करने की अपनी विधि निकालो, आपकी आप देखो, ये मुरली ना 4 पेज की जो मुरली है, इसमें 700 करोड़ लोगों के सॉल्यूशन है, कितने लोगों के सॉल्यूशन है, पर आपके लिए क्या सॉल्यूशन है वो आपको, आपके लिए अलग सॉल्यूशन है, मेरे लिए वो अलग हो सकता है। आप यहाँ 200 लोग बैठे हो, 200 भाई बहन के लिए वही उसी लाइन का महत्व अलग अलग हो सकता है, उसके मतलब अलग अलग हो सकते हैं, तो बाबा आपके लिए उस मुरली वो लाइन क्या कहना चाहता है, क्योंकि मुरली की हर लाइन बहुत गुह्य है, गुह्यता है, गोपनीयता है, गुह्य माना बहुत गहराई है, गोपनीयता माना उसमें बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, और रहस्य है, बहुत सारे क्या है उसमें, सस्पेंस है, और फिर अमूल्य है, आज की मुरली में था ना, मुरली बहुत अमूल्य है, तो ये बाबा की मुरली को मतलब बहुत बहुत प्यार होना चाहिए, तो जो एक सबसे बढ़िया कर्मेंद्र जीत बनने का साधन ही है। तो इससे विक्रम विनाश कैसे होंगे, एक हमेशा ध्यान रहे, ब्राह्मणों की 3 फेज होती है, टाइम तो मेरा पूरा हो गया, 15 मिनट और कर ले सकता हूँ, है जी, नहीं ओपन टाइम नहीं, बहन जी कहेंगे आप टाइम पूरा करो, अच्छा चलो, है जी, नहीं नहीं योग भी करोगे ना, अच्छा सुनो मेरी बात, तो आप जो है क्या बता रहा था मैं आपको, नहीं मैं ये बोल रहा था, चलो कोई बात नहीं, मैं दूसरी, है जी, हाँ मुरली के पॉइंट सबके अलग अलग हैं, तो अब जो है जैसे हमें क्या करना है, जैसे हमें जो है अभी बनने के लिए क्या करना है, रिटर्न जर्नी बताया था मैंने आपको, रिटर्न जर्नी में हमें क्या करना होगा। अब ये हमें चार नियम तो पक्के करने पड़ेंगे, ठीक है, चार नियम पक्के करने पर और चार मर्यादाएं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है शुद्ध सात्विक भोजन। भोजन का असर हमारे मन पे जरूर होता है, तो हमारा भोजन शुद्ध माना बाबा की याद में बनाया हो, बाबा की याद में खाया हुआ खाना चाहिए। ये बाजार का कई चीजें होते हैं, बाजार की बनी हुई है, मशीन की बनी हुई है। मशीन को ऑपरेट करने वाला कौन, ब्रेड को ऑपरेट करने वाला कौन, ब्रेड बन रही है माना बाजार की, उसे ऑपरेट करने वाला कौन, पैकिंग करने वाला कौन। चलो मशीन भी पैक कर रही है पर वाइब्रेशन कैसे है, है ना, तो वो बहुत ध्यान रखने की बात है। तो बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में खाओ, सिंपल रोटी सब्जी खाओ, है ना, वो अच्छी है, तो ये ध्यान रखो, ठीक है। तो बाबा की बहुत प्यार से सूखी रोटी भी खाओ, अच्छी बात है, सब्जी तो शुद्ध सात्विक भोजन। शुद्ध भोजन क्या बताए, हाँ 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 वही बताना जा रहा हूँ। तो आपको क्या करना, शुद्ध सात, वो बताता हूँ ब्राह्मण के तीन फेज बताता हूँ, मुझे ध्यान है। तो पहली बात है शुद्ध सात्विक भोजन, तो बाबा की याद में बनाना, और बाबा ऐसा भोजन जो सातों गुणों को बढ़ाने वाला हो, जो सात गुणों को बढ़ाने वाला हो, जैसे फल अंकुरित है, दलिया है, सब्जी रोटी है, फल है, सलाद है, दूध है, ये सातों गुणों को बढ़ाने वाला भोजन। रास्तिक भोजन क्या है, आलस पैदा करेगा, जैसे पराठा पकौड़ा समोसा मिठाइयां, ये आलस पैदा करेगा, आपको भारी पड़ेगी ना पेट में, तो ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाएगी इसमें, तो आप करोगे योग नींद आएगी, चलाओगे मन को मन चलेगा नहीं। मुरली के पॉइंट मंथन करना चाहोगे, विचार सागर मंथन करना चाहोगे, नहीं विचार सागर मंथन होगा ही नहीं, दिमाग जैसे नहीं भारी हो जाएगा दिमाग। फिर तामसिक भोजन, तामसिक क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स, ये कोल्ड ड्रिंक पीते ना, ये जो होते ना क्या बोलते, पेप्सी, कौन से कोका कोला, स्प्राइट, क्या क्या नाम से आते हैं, सेवन अप, कई नाम से आते ना, कोका कोला पेप्सी कई नामों से आते हैं, तो ये कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं, सारों में कैफीन बहुत होती है, चाय कॉफी ये भी तामसिक है, उत्तेजना पैदा करता है, लहसुन प्याज अचार ये तामसिक उत्तेजना पैदा करते हैं हमारे अंदर, मिर्चें लाल मिर्चें बहुत ज्यादा मसाले ये बहुत उत्तेजना पैदा करते हैं। तो ये खा करके, ऐसा भोजन खा के आप सोचो योग कर सकते हो, योग नहीं कर सकते, मन ले जाओगे इधर को और जाएगा इधर को इधर को इधर को इधर को, ठीक है। तो बहुत सिंपल भोजन, बहुत बेसिक भोजन खाना चाहिए और चबा चबा के खाना चाहिए बाबा की याद में। कभी बातें करते हुए खाना मत खाओ, कई लोग बातें करते करते खाना खाते हैं, वो साथ साथ खाना खा रहे हैं, साथ में हवा भी खा रहे होते हैं, साथ में हवा जाएगी ना मुंह में, तो हवा जाएगी तो बीच में खाने के बीच में हवा जाएगी तो वो खाना पचेगा नहीं, फिर पेट में भारीपन होगा, एसिडिटी होगी, है ना, बदहजमी होगी। कभी खाना खाते टाइम बोलो मत, कभी मुंह पे टेप नहीं लगा सकते, किंतु खाना खाते टाइम मुंह तो खोलना पड़ता है, पर थोड़ा सा खोलो फिर मुंह के अंदर ही अंदर चबाओ। कई लोग खाना चबाते करते मुंह खोल खोल के चबाते हैं, है ना, मुंह बंद करके होठ बंद करके अंदर चबाना चाहिए, चबाना आता है अंदर मुंह बंद करके, है ना, मुंह बंद करके अंदर अंदर चबाना चाहिए, राइट, रॉयल्टी होनी चाहिए खाना खाने में भी। तो पहली बात है जब शुद्ध सात्विक भोजन खाओगे तो फिर योग लगेगा, अमृत वेला तब होगा, तब मुरली अंदर जाएगी, तब सारा दिन मनन चिंतन होगा, तब सच्चाई से लेटर लिखा जाएगा बाबा को। तो पहला ये, दूसरा पवित्रता, पवित्रता पहले तो ब्रह्मचर्य का पवित्रता चाहिए, किसने लिखा, कोई है, वो हमारी खुशी कोई नहीं खाता, खुशी तो हम अपने खुद ही खा लेते हैं ना, तो मेरी बात सुनी आपने, तो पवित्रता जितनी पवित्रता होगी उतना, क्योंकि बुद्धि में कौन है, कई लोग कहते हैं हमारे योग नहीं लगता, क्यों योग नहीं लगता, हमारी बुद्धि में बैठा कौन है, मेरी बुद्धि में मेरा बेटा बैठा है, मेरी वाइफ बैठी है, मेरे बच्चे बैठे, मेरी माँ बैठी है, मेरे बाप बैठे, उनसे तो बहुत अच्छा योग लगता है, जो बुद्धि में बैठा होगा उससे तो योग लगेगा। बुद्धि माना दिल, इस दिल में कौन बैठा है, इस दिल की बात नहीं, इस दिल में कौन बैठा है, इस दिल में जिसको बैठा उससे तो योग बहुत अच्छा लगता है, मेरे गहने रखे हैं उसमें, मेरा बैंक में बैलेंस रखा है, है ना, तो उसमें तो बड़ा अच्छा योग लगा है मेरा, यहां बैठे बैठे योग लग जाता है नहीं, बेटा बैठा है बुद्धि में, बेटा तो वहां बैठा है हिसार में, वो तो बहुत अच्छा योग लग रहा है, यहां बैठे बैठे भी लग रहा है नहीं? अब बाबा की डायरेक्शन क्या है, बच्चे ये अपना दिल कमरा खाली करो, दिल रूपी कमरा खाली करो तो मैं हूं, अब इतने सारे इसमें 50 लोग बैठे हों, उसमें बाबा इतने छोटे से कमरे में 50 लोग बैठे हैं, बाबा कहाँ के बैठेगा? बैठेगा मुझे बता। तो पहले इसको खाली करो, इसको ही पवित्रता कहते हैं कि मेरे दिल में सब दे के संबंध, दे के स्वभाव संस्कार, दे के पदार्थ यहां दिल में बैठे हैं, इनको बाहर निकालो। घर से बाहर नहीं निकालना, यहां से बाहर निकालो, ठीक है? बुद्धि बुद्धि बुद्धि, तो इस बुद्धि में से इनको निकालो और निकाल के घर में रखो। जैसे एक नर्स होती है ना, हम डॉक्टर हैं, जैसे डॉक्टर का हमें काम है, डॉक्टर नहीं हूं पर डॉक्टर का काम मुझे मिला हुआ है ना, तो मैं डॉक्टर का काम करता हूं, तो मेरे बुद्धि में क्या है, मेरी बुद्धि में पेशेंट नहीं है, मेरी बुद्धि में क्या है, मेरी बुद्धि में है, मेरी बुद्धि में क्या चीज है, मेरी बुद्धि में बाबा है, तो पेशेंट की सेवा करता हूं, क्योंकि कोई पेशेंट मेरी बुद्धि में नहीं है। कल हार्ट का प्रोग्राम खत्म हुआ, 100 लोग आए हुए थे, 7-8 दिन हमारे पास रहे और सबसे बहुत प्यार से रहे, किंतु मेरी बुद्धि में कोई भी दिलवाला याद नहीं है। दिलवाले पेशेंट है ना, दिलवाले कहते हैं ना हार्ट पेशेंट को, उसमें से कोई मुझे याद नहीं है, किसी का संकल्प भी नहीं है, सेवा की अपने घर गए, रोज पेशेंट देख के आते हैं, उसकी बहुत प्यार से सेवा करते हैं, किंतु बुद्धि में मेरे नहीं है। ऐसे एक नर्स होती है, 60 बच्चे हैं उसके वार्ड में, 60 बच्चों को दवाई दे आती है, बड़े प्यार से प्यार प्यार करके दवाई दे आती है, बच्चे प्यार से ले भी लेते हैं। उसकी एक बच्ची घर में है, उस बच्ची को देने में उसको नानी याद आती है, दवाई लेती नहीं, थप्पड़ मारती है उसको, वो 60 बच्चों को थप्पड़ नहीं मारती है। मेरी हमारी टीचर, हमारी नर्स थी, हमारे जब मैं पढ़ता था MBBS करके हाउस जॉब कर रहा था, सबकी बात बता रहा हूँ, कहते डॉक्टर साहब मैं उसको अपनी बच्ची एक बच्ची को देने में तंग हो जाती हूँ, वो 60 बच्चों को मैं देखो आपके सामने देखा है, कुछ भी नहीं, कोई बच्चा रोया भी नहीं, और मेरी बच्ची मारती है, मेरी बच्ची रोती है, मैं थप्पड़ लगाती हूँ उसको। वहां मोह है, इसके कारण उसकी एक बच्ची की सेवा करना उसको मुश्किल है, और यहां मोह नहीं है, 60 बच्चों की सेवा कर देती है। तो अपने घर में रहो, नर्स की तरह सेवा करो, डॉक्टर की तरह सेवा करो, तो अच्छी सेवा कर पाओगे, अपना कर्तव्य अच्छा निभाओगे। कि तुम मोह से करोगे तो सेवा नहीं कर पाओगे, वो ना संतुष्ट होंगे, ठीक है? तो बुद्धि से निकाल के बाबा को बिठाओ, तब योग लगेगा बाबा से, यही पवित्रता है। मेरी बुद्धि में एक बाप के सिवा कोई ना हो, यह सच्ची पवित्रता। तो कर्मेंद्रिय की पवित्रता तो ब्रह्मचर्य तो रखना है, किंतु साथ साथ हमारे मन में भी पवित्रता हो, बोल में भी पवित्रता हो, ऐसा कोई बोल हमसे ना निकले जो किसी को हमें हमारी तरफ खींचे। जब हमारा मन पवित्र शुद्ध हो जाएगा, पवित्रता माना जो सत्य रूप है ना, मेरा और आपका सत्य रूप है, उसी को बुद्धि में रखू। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है, जैसे ब्रह्म तत्व में रहकर आत्माएं एक दूसरे से आचरण करती है ना, वैसा आचरण हमारा इस दुनिया में रहते होना चाहिए, पत्नी के साथ, पति के साथ, भाई बहन के साथ, माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ। ये है आत्मा, भले मेरा बेटा बेटी है, किंतु ये आत्मा के रूप में मुझसे पिछले जन्मों का हिसाब किताब चुकता करने के लिए आया, ठीक है? तो आत्मा के रूप में देखो, और कभी घर के डायरेक्टर मत बनो, ये भी अपवित्रता है। जो बाप होता है ना यूजली, या माँ होती है, वो डायरेक्टर बन जाती है, मैं बड़ी हूं मैं समझदार हूं, मैं बड़ा हूं मैं समझदार हूं, मेरे साथ सबको चलना चाहिए। ध्यान रहे, कोई किसी के हिसाब से नहीं चलेगा, कर्मों के हिसाब किताब के कारण आप इकट्ठे हुए हो एक परिवार में, और वो आप भी एक्टर हो, वो भी एक्टर है, परमात्मा डायरेक्टर है और आपके कर्म डायरेक्टर हैं, कर्मों के हिसाब किताब से चलेंगे। सेंसिटिव नेचर क्यों बनती है हमारी, इस कारण बनती है कि मैंने इनके लिए इतना किया, मैंने इनके लिए इतना किया, इतना सा था, अभी इतना बड़ा कर दिया इसको, है ना? इतना बड़ा आपने किया कि अपने आप हो गया, तो फिर वो मेरे सामने बोलते हैं ऐसे, मेरे सामने ऐसे बात करते हैं, मैं इनके लिए इतना करती हूं, मैं इनके लिए इतना करता हूं, तो फिर फीलिंग आती है, फिर रोना आता है, फिर उदासी आती है। एक्सेप्ट करना सीखो, जो जैसा है, किसी को बदलने की कोशिश मत करो। घर में मैं पति को बदल दूं, पत्नी को बदल दूं, इसको ज्ञान में ले आऊं, इसको बदल दूं, इसको बदल दूं, किसी को बदलने की कोशिश मत करो, सिर्फ अपने आप को बदलने की कोशिश। आपको देख के दूसरे बदल सकते हैं, कि तू आप किसको बदलने की कोशिश करो। अपने घर में ज्ञान कभी मत सुनाओ, ये ध्यान रहे, अपनी माँ को, बाप को, भाई को, बहनों को, बच्चों को कभी मत ज्ञान सुनाओ, अपने कर्मों में इसे ज्ञान सिखाओ। इतने मीठे बनो, इतना धीरज रखो, इतना शांत रहो, ताकि आपके बच्चे बोले मम्मी आप ऐसे कैसे शांत रहती हैं, हमें तो गुस्सा आ जाता है, आप तो बहुत शांत रहती हो, कोई भी कुछ बोलती नहीं हो, आप तो मुस्कुराती रहती हो, पापा आप तो मुस्कुराते ही रहते हो हमेशा, हमें तो आपको गुस्सा नहीं आता क्या, आप ऐसे कैसे कर लेते हो? बेटा कुछ नहीं कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं, जब उनको क्यूरियोसिटी पैदा होने दो, जब उनके भूख बढ़ जाए तब थोड़ी सी बात, एक इतनी सी बात बताओ, ज्यादा नहीं बताओ, घर में कभी ज्यादा नहीं बताना चाहिए। अच्छा फिर जाओ बेटा सेंटर पे चले जाओ, सीखना है तो सेंटर पर जाओ, क्योंकि आपको वो अच्छा बुरा सब जानते हैं आपका। आप फिर कहोगे आप बातें तो बहुत करते हो, करते तो कुछ भी नहीं हो, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं होता है। तो अब आप बच्चों को कभी ज्ञान मत दो, बच्चों को अपने कर्मों से सिखाने का, सर स्व को परिवर्तन करोगे सेवा अपने आप हो जाएगी। ठीक है, मैं आपके परिवृत्ति वालों की बात हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमें कैसे कैसे कर्मातीत बनना पड़ेगा, कैसे कर्मेंद्रजीत बनना पड़ेगा, तो ऐसे रिटर्न जर्नी करते करते आप क्या इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले तीन फेज होते हैं ब्राह्मणों की। पहली फेज होती है उसको बोलते हैं स्यूडो हनीमून फेज, हनीमून होता है ना, हनीमून तो हमारा परमात्मा के साथ पहले पहले हनीमून होता है, दो तीन साल का है ना, हनीमून समझते हैं ना, हम बैठे हैं ऐसे बाबा बाबा डोरी खींच लेता है ना, बाबा के पास जा रहे हैं, बाबा गोद में बिठा रहा है, बाबा प्यार कर रहा है बाबा, हम हालांकि कुछ ज्यादा करते नहीं है कि तो बाबा हमको बार बार प्यार करता रहता है, ऐसा फील होता है बाबा मेरे साथ है कि थोड़े से बड़े हो जाते हैं दो तीन साल के, जैसे छोटा बच्चा बड़ा होता है फिर क्या कहते हैं, माँ क्या करती है, अब तू चल, अच्छा वो वहां जाके बैठ, पेशाब वहां जाके कर, फिर बच्चा कमरे में करते अच्छा नहीं लगता, फिर डांट मारते हैं, तो कहते तू वहां जाना, यहां क्यों करता है, तो बताया ना वहां जाके कर, वहां जाके ऐसे करना ये करना। तो बच्चे को फिर हम एक्सपेक्ट कर, बाबा भी दो तीन साल के बाद हमसे एक्सपेक्ट करने लगता है कि अब इसके विक्रम विनाश करना शुरू करो, तो फिर विक्रम विनाश होना शुरू हो जाते हैं। और हर जन्म में तीन तीन स्टेज होती हैं, बताया ना मैंने, बचपन बुढ़ापा जवानी और बुढ़ापा। तो जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, जब हमने अमृत वेला किया, मुरली सुनी, चार्ट भरा, अनंत मनन चिंतन मंथन सिमरन और रात को चार्ट भरा, लेटर लिखा, चार्ट भरा, मुरली पढ़ के और सोए, तो हमें क्या करना, क्या होता है कि कुछ दिन तो हमारा योग बड़ा अच्छा लगता है, जब बुढ़ापा चल रहा होता है ना उस जन्म का, तो योग लगेगा, योग लगेगा, अमृत वेला भी होगा, मुरली भी अच्छी अंदर बुद्धि में जाएगी, मनन चिंतन मंथन सिमरन भी अच्छा होगा, और लेटर भी लिख देंगे, चार्ट भी भर लेंगे, और मुरली भी पढ़ लेंगे, और खुशी भी रहेगी। फिर थोड़े दिन बाद देखेंगे ना अमृत वेला अच्छा नहीं हो रहा है, मजा नहीं आ रहा, मुरली सुनने में मजा नहीं आ रहा है ना, मनन चिंतन मंथन भी कुछ ढीला हो गया है, कर तो रहे हैं किंतु ढीला हो गया, रात को लेटर भी लिखने में मजा नहीं आ रहा है, वो जवानी का समय आ गया। ठीक है, क्योंकि विक्रम किया ना उल्टा चल रहा है ना, तो विक्रम के उसमें करेंगे तो मजा नहीं आएगा, फिर क्या होगा, मतलब हम ऊपर गए थे फिर थोड़ा नीचे आ जाएंगे, फिर बचपन आ जाएगा, फिर ऊपर जाने लग जाएंगे है ना, फिर पीछे अगली जन्म का बुढ़ापा आएगा उसमें ऊपर जाएंगे, फिर जवानी शुरू हो जाएगी, फिर नीचे जाना शुरू, 82वें जन्म का 81वें जन्म का बुढ़ापा बच्चे जवानी आएगी, फिर नीचे जाना शुरू, फिर बचपन शुरू हो गया, फिर ऊपर जाना शुरू 81वें जन्म 82वें जन्म का, फिर ऐसे शुरू होते होते तो कभी जवानी कभी कभी बुढ़ापा कभी ऐसे करके, कभी लाइन ऊपर कभी नीचे, कभी लाइन कभी ऊपर कभी नीचे, कभी हमें लगता है नीचे जा रहे हैं कि तो नीचे नहीं जा रहे, ऊपर ही जा रहे होते हैं, जैसे माउंट आबू आते हो ना कार में, तो कई बार लगता है कार नीचे जा रही है, नीचे नहीं जा रही होती है तो ऊपर ही, राइट, तो हम ऊपर ही जा रहे हैं किंतु ऐसे लगता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसको बोलते हैं केओटिक फेज। जब 63 जन्म के ऐसे विकर्म विनाश हो जाएंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, फिर हमें हनीमून फेज आएगी, फिर बाबा और मैं साथ साथ रहेंगे, समान जब आज की मुरली संध्या की मुरली थी ना, बाप समान, फिर हम मिलन मेले में झूलते रहेंगे, तब ये स्टेज आएगी। तो हमारी ऐसे विक्रम विनाश करते 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 हमें चार नियम और चार मर्यादाएं, इन पे कुछ भी हो जाए, चाहे योग लगे चाहे ना लगे, चाहे मुरली समझ में आए चाहे ना आए, कुछ भी होता रहे, हमें चार नियम कभी नहीं तोड़ने, अमृत वेला, मुरली, सारा दिन मनन चिंतन मंथन सिमरन, और सोने के पहले चार चीजें, लेटर, चार्ट, मुरली और याद, सो जाओ सुबह उठ के फिर शुरू कर दो। चार परहेज, पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन और सत्संग, सत्संग माना सिर्फ बाबा और मुरली का संग, और किसी चीज का संग नहीं, बाबा और मुरली, ना टीवी का संग, ना इसका संग, ना उसका संग, बस बाबा और मुरली का संग। और कोई ध्यान रहे कभी भी, ये कई लोग मुद्रा लगा के बैठते हैं, ऐसे कैसे करके बैठते हैं भाई मुझे बताओ, ऐसे करके बैठते हैं, यूं करके अमृत वेला करते हैं, मुरली सुनते हैं यूं करके, तो बाबा ने कभी कहा मुद्रा लगा के बैठो? हमें चलते फिरते उठते बैठते खाना बनाते खाना खाते बाबा की याद में, अगर मुझे ऐसे आदत पड़ गई तो क्या होगा, मतलब ऐसे करूंगा तो योग लग जाएगा, ऐसे करूंगा तो मेरे को बुद्धि ठीक रहेगी, और ऐसे कर लिया तो योग टूट जाएगा। मतलब फिर तो खाना मुझे खाना खाना भी ऐसे ही करना पड़ेगा ना, खाना ऐसे रोटी भी ऐसी ऐसे बनानी पड़ेगी ना, कपड़े भी ऐसे धोने पड़ेंगे ना, नहीं ऐसे कार भी ऐसे ऐसे चलेगी ना, ऐसी कोई आदत मत डालो जिसके, क्योंकि हमारा ऐसा योग नहीं है, किसी मुद्रा पे आधारित योग नहीं है, किसी हमारी पोस्चर पे बैठ के आधारित योग नहीं है कि मैं ऐसे करके बैठूं तो योग लगे, ऐसे कैसे भी बैठो, ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, ऐसे करके बैठो, है ना, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते लाल लाइट में योग लगे, अब अंत में जब विनाश होगा तो लाल लाइट करोगे क्या, गीत बजाओ, चलो गीत बजेगा फिर ऊपर जाएंगे, है ना, अंधेरा होगा, अंधेरे में योग करने का अभ्यास होना चाहिए, है ना, लाइट जला के योग नहीं, अंधेरे में भी योग लगाने का अभ्यास होना चाहिए, हर चीज की प्रैक्टिस होनी चाहिए। हमारे पास जब होता है ना, हम लोग क्या करते हैं हॉस्पिटल में, हमारा एक्सीडेंट, जैसे कल बस गिरी, परसों बस गिरी थी ना नीचे, परसों सैटरडे को नहीं, फ्राइडे को रात को बस गिरी, एक वो टेम्पो गिर गया था नीचे, उसमें 20 लोग थे, 3 तो ऑन द स्पॉट मर गए। तो बसें कभी कभी गिरती हैं पहाड़ी से, है ना, पर हम लोग क्या करते हैं, बीच में मॉक ड्रिल करते हैं, जैसे कोई अचानक 40 लोग आ गए तो कैसे करेंगे, हम कैसे मैनेज करेंगे, 50 लोग आ गए अचानक, एक्सीडेंट हो गया, अचानक बहुत सारी पॉइजनिंग हो गई, अचानक हैजा फैल गया, तो हम कैसे करेंगे, हम लोग ऐसे ऐसे ड्रिल करते हैं, रिहर्सल करते हैं कि कैसे डॉक्टर्स, कैसे डॉक्टर्स कहाँ कहाँ रहेंगे, कैसे कैसे होगा, वार्ड में क्या करेंगे, नर्स को क्या करना है, वार्ड बॉयज को क्या करना है, ऐसी ड्रिल करते हैं। तो ऐसे ही हमको अभी विनाश नहीं हुआ कि तो उस विनाश की पहले से तैयारी करनी चाहिए, ऐसा ऐसा होगा तो हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या स्थितियां होंगी हमारी, कैसे हम अपने आप को मैनेज करते हैं, समझ रहे हैं बात, ऐसी हमारी अभ्यास होनी चाहिए। तो हमें चार नियम, सत्संग, मतलब हमारा योग इतना सहज होना चाहिए, कैसी भी हालत में हो, कहीं भी हो, नहाते नहाते भी, ब्रश करते करते, मैं ब्रश करते करते सोचता हूँ कि मैं अगर कभी मुर्दे का भी ब्रश करते हैं क्या, ब्रश करते करते भूल जाते हैं बाबा, उसमें बाबा बहुत भूलता है, शेव करते करते बाबा भूल जाता है, नहाते नहाते बाबा भूल जाता है, तो मैं फिर सोचता हूँ अच्छा मुर्दा का भी स्नान करता है क्या, तो मैं आत्मा स्नान करा रही हूँ, मैं आत्मा शेव कर रही हूँ, मैं आत्मा ब्रश कर रही हूँ, क्योंकि हर समय याद का अभ्यास होना चाहिए, हर समय याद का अभ्यास होना चाहिए। तो कोई हमारा कभी योग हमारा किसी भी स्थिति पर आधारित नहीं होना चाहिए, हमेशा ऑटोमेटिक होना चाहिए, ठीक है, इतना प्रैक्टिकल अभ्यास, इतना सरल योग है हमारा, बैठे देखो अभी यहां ऐसे किया और यूं पहुंच गए ऊपर, कुछ भी नहीं करना, ना ऐसे करना, ना ऐसे करना, ना लंबा सांस लेना, कई लोग लंबा सांस लेके योग करना शुरू करते हैं, कई लोग अनुलोम विलोम करते हैं, कई कपाल भाती करते हैं, है ना, ये सब कर्म नहीं करने चाहिए, बाबा की जिसकी बाबा की डायरेक्शन नहीं है वो कभी नहीं करने चाहिए। आपको कोई बीमारी है, राजयोग से ठीक हो जाएगी, राजयोग से, हमने हार्ट के पेशेंट के ब्लॉकेज खुलते हैं, डायबिटीज ठीक होती है, ब्लड प्रेशर ठीक होता है, कैंसर ठीक हो जाता है, कितनी कोई बीमारी भी ठीक हो जाती है, कैसे ठीक हो जाती है, कैसे ठीक होती है, सिर्फ राजयोग से, हम कोई क्रिया नहीं कराते किसी को, कुछ भी नहीं कराते, क्योंकि विक्रमों के कारण बीमारी आई, कोई बीमारी भी आई, चाहे ब्लड प्रेशर आया, चाहे डायबिटीज आया, चाहे हार्ट डिजीज, कैंसर, चाहे एसिडिटी, माइग्रेन, कमर का दर्द, घुटना खराब हो गया, क्यों आया, कोई ना कोई पाप कर्म किया था उसके कारण, विक्रम विनाश होगा तब बीमारी ठीक होगी। हाँ, डॉक्टर का हमारा हिसाब किताब हो सकता है, वो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वही बाबा को याद करो, बाबा टच करेगा बच्चे, उस डॉक्टर के पास चले जाए, बाबा दिखाएगा वो डॉक्टर आपको, बाबा आप ही मेरे डॉक्टर हो, तो बाबा कहेगा बच्चे तुम्हारा इस डॉक्टर से हिसाब किताब है, जाओ उसका हिसाब किताब दे आओ, ठीक हो जाओ, अपनी मन मत चलाओ, ठीक है। तो इस तरह से जब आप चार नियम और मर्यादा क्या है, ये दैवी गुणों की धारणा, एक बार भी गुस्सा मत करो, कितना मर्जी गुस्सा आए किसी बात का, एक बार गुस्सा के 3 दिन तक योग नहीं लगेगा, एक बार उदास हो गए 5 दिन तक योग नहीं लगेगा, कोई गलती ना करो, कुछ भी हो जाए चुप रह जाओ, बोलो मत, बाबा को लिख के दे दो, कितना भी कुछ हो। हाँ, और घरों में पति पत्नी स्पेशली कभी भी अपने मुंह से एक दूसरे के गलत शब्द मत निकालो, तुम तो 30 साल से मैं रह के तुम्हारे साथ तंग हो गई, या मैं तुम्हारे साथ तंग हो गया, तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होता है, तुम तो ऐसे ही हो, है ना, कभी नहीं मुंह से गंदे शब्द निकाल, अभी ब्राह्मण कभी ऐसे शब्द बोलते नहीं है, ठीक है। तो ये दैवी गुणों की धारणा रखो, मीठा बोलो, तो इस तरह से करते जाओगे तो आपके विक्रम विनाश होते जाएंगे। चार नियम, चार मर्यादा, जितनी मर्यादा अच्छी रखोगे उतना योग अच्छा अमृत वेला होगा, उतनी अच्छी मुरली होगी, उतना अच्छा अटेंशन रहेगा, उतने अच्छे लेटर लिखा जाएगा। तो अपने आप विक्रम विनाश होते होते 21वें जन्म पे पहुंच जाओगे, जब सतो त्रेता की सतो से जाएगी तो कर्मेंद्रियां क्या हो जाएंगी, चंचलता समाप्त हो जाएगी तो कर्मेंद्रिय जीत बनोगे। तो इन आंखों में क्या भर जाएगी? पवित्रता भर जाएगी, ज्ञान भर जाएगा, नाक में, मुख में, बोल में मीठापन भर जाएगा, कानों में ऐसा भर जाएगा, तो कर्मेंद्रिय जीत बन जाओगे। फिर आपके विकर्म, फिर आप माया जीत बना, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर विजय प्राप्त हो जाए। इनके बाल बच्चे ना आलस्य अलवेलापन वो खत्म हो जाएंगे। तो ये माया जीत और फिर प्रकृति, फिर ये शरीर क्या होगा? फिर ये प्रकृति जीत, मतलब ये शरीर जैसा भी है आपके बाधा नहीं बनेगा। जो दादी जानकी है, प्रकृति जीत कैसे बनी? शरीर में तकलीफ है किंतु प्रकृति जीत है। अभी भी अमृत वेला करती है, अभी भी मुरली पढ़ेगी, मुरली सुनेगी, जब भी जाओ तो कुछ ना कुछ बाबा की बातें बताएगी, प्रकृति जीत है ना। 100 साल से ऊपर की उम्र हो गई है ना, प्रकृति, ये प्रकृति जीत है। उनकी स्थिति में कभी उनका शरीर बाधा नहीं बनता, कितनी भी तकलीफ हो शरीर में, शरीर डॉक्टर के लिए तकलीफ है, उनके लिए तकलीफ नहीं है, प्रकृति जीत। और प्रकृति साथ देती है, वातावरण भी साथ देता है, भाई बहन भी साथ देते हैं, तो ये प्रकृति जीत। और प्रकृति जीत बनने के बाद फिर विकर्मा जीत, फिर विक्रम होने बंद हो गए। अभी शरीर पे किसके कारण विक्रम होते हैं? शरीर के कारण होते हैं, इंद्रियों के कारण होते हैं, और कोई ना कोई विकार का वश होता है अंदर, तो होते हैं, तो विक्रम होने बंद हो गए। अब बैटरी चार्ज होने शुरू, लाइट हाउस माइट हाउस बन गए। लाइट हाउस माइट हाउस बने तो स्मृति रिकॉर्ड, नई नई स्मृति, अच्छी अच्छी स्मृति रिकॉर्ड, सत्युग की स्मृति इमर्ज होने लगती है, सत्युग की स्मृतियां, फरिश्ते की स्मृतियां इमर्ज हमारे अंदर है तो कि ना, स्मृतियां इमर्ज होने लगती हैं। और इमर्ज होने से क्या होता है, ऑटोमेटिक हमारी वृत्ति कैसी होती है, रूहानी हो जाती है, भावना सबके प्रति शुभ हो जाती है, कोई कैसा भी हो, बल्कि रहम आता है दूसरों के ऊपर, रहम दिल बन जाते हैं, और फिर संकल्प एकदम 100% पावन हो जाते हैं, शुद्ध श्रेष्ठ हो जाते हैं, शक्तिशाली कल्याणकारी, और तब हमारी कर्मातीत स्थिति आ गई है। अब कर्मातीत है, फिर कर्मातीत आने के बाद हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, फिर हम क्या हो गए, अव्यक्त हो गए, और फिर फरिश्ता माना 100% हमारा मन कॉन्शियस हो गया। अब ये अनकॉन्शियस खत्म हो गया, सब कॉन्शियस खत्म हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया एकदम फरिश्ता। फरिश्ता माना आर पार देखना, मतलब जैसा चाहो देख, जो अंदर है वो बाहर है, सोचना बोलना करना एक जैसा हो गया, और फिर हमारी पूरे वर्ल्ड से कनेक्शन हो जाता है, बाबा से 100% हॉटलाइन बन जाती है, और फिर हर आत्मा का कहीं भी दुनिया में कुछ है, हमारे बैठे बैठे वाइब्रेशन, मधुमेह में बैठे बैठे, हिसार में बैठे बैठे, सारे विश्व को वाइब्रेशन अपने आप जाते हैं, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, राइट। तो इस तरह से हम क्या बन जाते हैं, अवेक्ट फरिश्ता। ओम एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सॉरी, एक साथ जो कई बार ना हमारे यहाँ पर क्या करते हैं ना, जैसे हमें लोग हमें बोलते हैं जैसे सात रंग होते हैं, ज्ञान के कभी रंग नहीं होते, पवित्रता के रंग, ये तो सूरज की लाइट में 7 रंग होते हैं, है ना, लाल हरा पीला जो भी रंग है ना, स्पिरिचुअल लाइट में तो कोई रंग होता ही नहीं, ना ज्ञान का कोई रंग नहीं होता, पवित्रता का कोई रंग नहीं होता, शांति का कोई रंग नहीं होता, प्रेम का रंग कोई नहीं होता, खुशी का रंग कोई नहीं होता, है ना, आनंद का कोई रंग नहीं होता, आत्मा का कोई रंग नहीं होता, तो उससे निकलने वाली शक्ति का भी कोई रंग नहीं होता, ठीक है। तो ये रंग, जो रंग वंग की बातें ना, कलरफुल रंग बिरंगा राजयोग, ये कोई बाबा का बताया हुआ राजयोग नहीं है, ठीक है, ये तो हम इन्होंने आयुर्वेद से देख के बना दिया। तो आपको मेरी रिक्वेस्ट है, जो बाबा ने जो बताया निज ज्ञान, निज मूल्यों में जो दिया है बाबा ने, उसके अलावा बुद्धि भटकाओ नहीं कहीं भी, ठीक है। मनुष्यों के बताया, ये तो द्वापर युग की स्थापना है, हमें द्वापर युग स्थापन नहीं करना, हमें क्या स्थापन करना है, सत्युग स्थापन करना है। इसलिए बाबा की जो मुरलियां हैं, मुरली के अलावा जो ब्रह्मा बाबा ने किया एक्यूरेट वही करो, अगर हमें फरिश्ता बनना है तो। ब्रह्मा बाबा पहला फरिश्ता बना, हमें भी फरिश्ता बनना है तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, उनको कॉपी करना है, कुछ नया नहीं करना है, राइट। ब्रह्मा बाबा ने ऐसी बातें करी, जब दादियां कभी ये बातें नहीं करती हैं, दूसरे भाई बहन ऐसी बातें करते हैं, तो हमें जो है उनमें नहीं जाना है, ठीक है। इसे बहुत ज्यादा क्लासेस सुनना भी अच्छी बात नहीं है, बाबा की मुरली में सब कुछ दिया हुआ है, सत्यसंग माना सत्य एक मुरली है, कोई बाबा है तो बाप, सत्संग माना बाबा और बाबा की मुरली, इसका ही संग करो, बाकी और चीजों का संग मत करो, इधर उधर किताबें पढ़ना, ये सुना उसकी सुनो उसकी सुनो, ये सब धंधे नहीं करो, ठीक है। मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते, सदगति कौन कर सकता है, एक शुक्र ओम
ओम शांति। भाई साहब ने हमें बहुत ही जैसे मैं तो कहूंगी कि जीवन के अंदर योग को कैसे सहज और सरल करना है और साथ साथ कर्म इंद्रिय चित सहजता से कैसे बने, बहुत ही वंडरफुल बातें हम सभी को प्रैक्टिकल बताई और सहज भाव से बताई जो ताकि एकदम दिल के अंदर चली जाए। तो वही बातों को हम प्रैक्टिकल जरूर करेंगे भाई साहब का, डॉक्टर सतीश गुप्ता जी का हम तहे दिल से धन्यवाद थैंक्स अदा करते हैं।